ऐ दीन दयाद्र नाथ है। हे नाथ, आप तो दीनों पर बड़े दयाद्र दयालु होते हैं, क्या हम ब्रजवासियों के ऊपर आपकी दया दृष्टि नहीं है क्या? मथुरा नाथ, अब तो आप गोकुल नाथ नहीं रहे, मथुरा के नाथ हो गए हो। कदावलोक्य से, मैं इन नैनों से कब आपको देखूंगी? कदा मतलब वेन, कब? कब मेरे जीवन में वो सौभाग्य का सूर्य उगेगा कि हे श्याम सुंदर, आपका मुखारविंद मैं इन नैनों से देखूंगी। हृदयम त्वदलोक कातरम, मेरा हृदय फटा जा रहा है। अगर श्याम सुंदर आप नहीं आए ना, सच कहती है जी नहीं पाएगी। दैत, अंत में राधा रानी श्लोक में कहती है दैत। दैत शब्द का अर्थ होता है माय डियर, प्रियतम। गोपी गीत का प्रथम श्लोक, दैत दृश्यता दीक्षुता तावका, अहम तवास्मि, हम आपकी है। दृक्षताम, हमारे नैनों के सामने दिखाई दीजिए। हे दैत, हे प्रियतम। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, दैत दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। आप दिक्षु दर्शन दीजिए, किस दिशाओं में छुप गए? त्वयि, हम आपकी है। त्वयि धृता सव, हमने हमारे प्राणों को आपके चारु चरणारविंद में न्योछावर कर दिए हैं, और आप हमें ही छोड़कर चले गए। हे श्याम सुंदर, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ा और आप हमें छोड़कर चले गए। आप तो दीन बंधु दीनानाथ दयालु सरकार है, आपकी दया कहाँ चली गई? हे दैत, थोड़ा विचार करिए। ब्राह्म्यति, हम आपको ढूंढ रही है। किम करोमि अहम, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पत्थर पर सर फोड़ दे, कंबक के प्राण भी नहीं जा रहे हैं। गोपिया प्रार्थना करती थी, सबसे सौभाग्यशाली जीवन तो दशरथ जी का है कि राम विरह में उनके प्राण चले गए। हम अभागिनी तो प्राण भी नहीं त्याग सकती। कृष्ण पूछे क्यों नहीं त्याग सकती? बोले हमारे प्राण तो आपके पास है ना, त्वयि धृता सव, प्राण हमारे पास होने चाहिए ना। मरना आसान है, लेकिन प्रियतम की आज्ञा में, उसके विरह में जीना, उस मरने से भी बड़ी परीक्षा है। आपने कहा था कि हम आएंगे, और जब आप आओगे और हमें नहीं देखोगे तो दुखी होगे, इसलिए आपने बोला है। आपके वचन को जीवन सार प्राण सर्वस्व समझकर हम जी रहे हैं, थोड़ी सी दया कर दीजिए। बोलिए कृपा करके, इस श्लोक को पुनरावृत्ति करिए और इस शब्दों को चिंतन करिए, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी का ये उद्गार है प्रेम का, जिसको माधवेंद्रपुरी गा रहे हैं, जिसको राधा हृदय लेकर कृष्ण पृथ्वी पर आए, गौरांग महाप्रभु बने। थोड़ा इको कम करिए, तो इसको गाते हुए रो रहे हैं। ऐ दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरम् दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम् हे प्रियतम प्रकट हो जाइए नहीं तो इस प्राणों का भरोसा नहीं है हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है ये विरह उन्माद में विप्रलम रस में राधा रानी कृष्ण से प्रार्थना कर रही है यह श्लोक श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का है तो हम जिस पावन परंपरा में है और इस भक्ति वृक्ष के जो मूल बीज अंकुर है उनके श्रीमुख का यह श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महानुभाव ने रखा है जिसका हम श्रवण कीर्तन करके अपने पापों को धोकर पवित्र होकर उसी प्रेम धन को पा सकते हैं इन श्लोकों में ऐसी शब्दों में शक्ति है कि आप और हम बुद्धि से माप नहीं सकते भक्तों क्योंकि ये श्लोक स्वयं कृष्ण है भले आपको हमको संस्कृत समझ में ना आए लेकिन जिसको भगवान ने पाया है भगवान को जिसने प्रेम किया है प्रसन्न किया है उन पवित्र प्रेमी वैष्णवों के हृदय के भाव उद्गार शब्द का रूप ले रहे हैं और इसलिए इन शब्दों में वही शक्ति है जो कृष्ण में है नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति ये सिद्धांत है आज पांडव भीमा एकादशी है महाभारत में संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि अर्जुन जब पाशुपतास्त्र भगवान शिव से प्राप्त किए तो कुरुक्षेत्र की युद्ध में काम में आने वाला महाअस्त्र शिव जी का जो वरदान के रूप में गिफ्ट के रूप में अर्जुन को मिला तो अर्जुन बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि हमें भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और अधिक क्योंकि वे महामृत्युंजय महादेव है और वैष्णवानाम यथा शंभु है तो अर्जुन तो क्षत्रिय थे और इंद्रप्रस्थ में बड़ी सुविधा थी तो वर्णन आता है कि अर्जुन ने भगवान शिव के लिए एक विशेष महल जैसा मंदिर बनाया जिसमें आजकल की ये जो कारीगरी क्या है जो हम पत्थरों में बनाते हैं लकड़े में भी बनाते हैं मंदिरों में यथाशक्ति सामर्थ्य लेकिन अर्जुन ने बेस्ट से बेस्ट कला कारीगरों को बुलाकर एक ऐसा सुंदर देवालय मंदिर खड़ा किया भगवान शिव के लिए और उसमें सोने के चांदी के बर्तन जो आरती में पूजा में जो भी इस्तेमाल होता है वो सब प्योर गोल्ड के अर्जुन है भाई पैसे वाला है धनंजय क्या नाम है अर्जुन का जिसने धन को जीता है भीख मंगा नहीं है मांग के नहीं लाया जीत के लाया जब उत्तर दिशा में गए थे राजसूय यज्ञ में अर्जुन तो हिमालय तक जितने राजा थे उनके सबके सुवर्ण मुकुट महाराज युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिए थे बड़े भैया को गिफ्ट दिए थे कि और कोई काम हो तो बताओ बाकी उत्तर हिमालय तक जितने राजा है सबको जीत के लाए थे और भीम पूर्व में बंगाल ओडिशा तक समुद्र आ गया तब तक भीम गए बोले जितने राजा है सबको हरा के लाया चारों दिशा में चारों भाई गए थे और दिग्विजयी सर्वत्र चक्रवर्ती साम्राज्य युधिष्ठिर को प्रदान किया तब राजसूय यज्ञ हुआ था वही कर सकता है राजसूय जो दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट हो तो अर्जुन सोने चांदी के बर्तनों में और बड़े बड़े सुंदर पुष्पों का गार्डन बना के गुलाब मोगरा केवड़ा चंपा जो भी है कमल स्वयं इसकी इस्तेमाल मालिश करते फिर बढ़िया बढ़िया मंदिरों में पुष्प चढ़ाते थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को पता था एक बार कृष्ण आए अर्जुन से कहते चलो आज थोड़ा वॉकिंग करते हैं थोड़ा रात में प्रसाद लेकर सहर करने निकलते हैं दोनों कृष्ण अर्जुन सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति 11:41 भगवद गीता। अर्जुन कहते हैं मैंने आपको सखा समझ के आपके साथ खाया पिया सोया, आपको क्या क्या बोल दिया, यादव यादव बोल दिया, ए यादव इधर आओ, अभी पता चला कि आप तो सबके बाप है। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा नहीं समझ पाया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, सखा है साथ में, शाम को चंद्रमा की शीतल किरणें थी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये गंगा के तट पर यमुना के तट पर हम चलते, चल आज तुझे शिवलोक ले जाता हूँ योग बल से, योगेश्वर है ही है। अर्जुन ने कहा मेरा वीजा नहीं है कैलाश का। अरे हम है ना, शिव इज माई फ्रेंड्स, शिवा इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, वीजा वीजा की जरूरत नहीं है, हम है काय को टेंशन लेते हैं। अर्जुन ने कहा अच्छा फ्री में यात्रा कराओगे, टिकट का पैसा नहीं मांगोगे ना। बोले नहीं यार चल तू। तो भगवान तो योग बल से सीधा कैलाश की तलेटी में उतार दिए, मंदाकिनी की कलकल धारा बह रही है, अर्जुन और कृष्ण चल रहे हैं, बड़ा शीतल वातावरण था। हमने सोचा बाहर तो गर्मी है, कम से कम शब्दों से आपके हृदय को तो शीतल करें, क्योंकि आपके परिवार संबंधी तो हृदय से भी शब्दों से भी आपको गर्मी ही देते होंगे, लेकिन हम वैष्णव का एक सेवा होता है, ऐसी वाणी बोलिए और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए, सीखना चाहिए। मधुराधिपति के भक्त है भाई, वचनम मधुरम, आपकी वाणी ही आपकी पहचान है। यदा यदा मुंचति वाक बाणम तत् जाति कुलादि प्रमाणम, पहले के विद्वान लोग किस कुल के हो किस बाप के हो नहीं पूछते थे, वो बोलते थे वही समझ जाते थे कि हाँ हाँ नो ऐसे केस आई नो जो है, बोलते ही समझ जाते थे कि किस कुल का है किस गांव का है पहले के लोग। इसलिए अर्जुन गीता में पूछते स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, प्रथम प्रश्न यही है, और आप चाहते हो कि आपकी वाणी में ये विवेक ये विद्वत्ता ये प्रेम ये रस आए, तो आपके आपकी जीवा को आदत डालिए इस मधुरापति के नाम को बुलाने की, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जब कृष्ण जीव पर नाचेंगे ना अपने नाम के रूप में, तब ऑटोमेटिक सारे सद्गुण आएंगे। अर्जुन जा रहे हैं मंदाकिनी के किनारे किनारे, बोले अभी शिव के सामने मुलाकात हो ही जाएगी, माधव साथ में है तो क्या टेंशन है। तब तक एक व्यक्ति बैलगाड़ी में, बड़े बड़े बैलगाड़ी में बढ़िया बढ़िया पुष्प सुमन फूलों को रखे हुए जा रहा है। अर्जुन ने देखा अरे ये कैलाश में बैलगाड़ी, क्योंकि नंदीश्वर कभी जोते हुए शिव जी चढ़ते हैं नंदीश्वर पर ना, रथ थोड़ी बनता है नंदीश्वर के पीछे, थोड़ी गाड़ा चकड़ा थोड़ी होता है कि उस पर बैठते। अर्जुन ने सोचा यहाँ भी बैलगाड़ी चलता है क्या। पहले मतलब अलग दृश्य दिख रहा है, और उस बैलगाड़ी में क्या भरा था, पुष्प अलग अलग टाइप के। अर्जुन अपने महल में रोज पुष्प चढ़ाता था, पहले वर्णन सुने ना आप चांदी के, हाँ ओके याद रखते हो, सो नहीं गए ना। तो पूरी बैलगाड़ी जो पुष्पों से भरी थी मंदाकिनी गंगा में बहा के फिर चल दिया। तो दूसरा व्यक्ति आया उससे भी बड़ा बैलगाड़ी लेके, वो भी पुष्पों से भरा था। तो अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा माधव एक मिनट है, कृष्ण ने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो बैलगाड़ी वाले से पूछता है भैया ये पुष्प कहाँ से आए और गंगा में क्यों बहा रहा है, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है इसमें। उसने कहा अरे महाराज बताने का टाइम नहीं है, तुम कौन है इधर आ गया, नया व्यक्ति है क्या। वो कुछ बात भी नहीं किया, पुष्प डाल के फिर चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, चौथा, हजारों गाड़ी पुष्प की आ रही है जा रही गंगा में डाल रही। अर्जुन कह रहा साला हमसे कोई बात नहीं करता, मैं धनंजय पांडव शिरोमणि और ये लोग हमको भाव नहीं देते। एक गाड़ी वाले को अर्जुन ने बीच में रोका, बोले पहले प्रश्न का उत्तर दो फिर जाने दूंगा, मैं गांडी उधारी अर्जुन आपसे पूछ रहा हूं कि ये पुष्प कहां से आ रहे। उसने कहा भैया हमारा मंदिर शिव जी का फूल हो रहा है सारे पुष्पों से, और इसके लोग खाली करने के लिए गंगा में लाते ताकि हम जाते तब तक दूसरा दूसरा मंदिर फूलों से भर जाता है शिव जी का। बोले यही तो जानना चाहता हूं कौन पुष्पों से सेवा कर रहा है। बोले एक पांडव है जिसका नाम है भीम। जैसा नाम है ऐसा काम है उनका, सब क्वांटिटी में ही चलता है उनका, होलसेल नो व्यापारी से उसका सेलिंग छोटा नहीं है, छोटा मोटा काम हाथ में नहीं लेता। तो अर्जुन को और सरप्राइज हुआ, वो तो मेरा भाई बड़े भैया भीम, वो तो बढ़िया से जानते हैं कि भीम को एक श्लोक भी बढ़िया से नहीं आता। अर्जुन तो राग रागिणी उस्ताद है भाई, और वो भीम को रोज महल में साथ में, वो तो कंपनी साथ में रहते, और भीम को जानता है अर्जुन के इनको एक ही आइटम एक ही काम बड़ी उस्ताद बड़ी कुशलता से आता है, और वो है महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। बाकी ये पूजा करना श्लोक गाना ये तो भीम का काम, मतलब देखा नहीं कभी सुना नहीं। और अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार था कि मैं बढ़िया बढ़िया चांदी की सोने की थाली में बड़ा बड़ा सुंदर मंदिर बना के भगवान शिव की बढ़िया पूजा करता हूं, ऐसा कुछ था। इसलिए कृष्ण लाए थे यहाँ फ्री में कैलाश, ये बुखार उतारने के लिए अपने सखा का। भीम क्या करते थे, भीम को तो कोई पूजा पुष्प श्लोकों से कोई लेना देना नहीं था, पुष्प और चौना चांदी कुछ नहीं। लेकिन भीम क्या करते थे, खाने से पहले भगवान शिव को याद करते थे। बोले मेरा भाई बहुत पूजा करता है, थोड़ा मेरा भी मान लेना। बोले बाबा भाई भाई का तो पार्टनरशिप बनता है, सब लोग करेंगे तो आप फ्री नहीं रहेंगे, गणपति को संभालना कार्तिक को संभालना पार्वती का भी कंप्लेन रहता है, और आपके भगत सब भंगेड़ी लोग खाने पीने आपको फुर्से, तो हम लोग क्यों परेशान करें। भीम एकदम भाव से प्रेम से शिव जी को कुछ बोलता था, और वो चकड़े वाला बैलगाड़ी वाला कह रहा है अर्जुन से, अर्जुन ने कहा हो नहीं सकता तुम्हारी गलती हो रही, ये पुष्प तो अर्जुन चढ़ाता होगा क्योंकि वो खुद चढ़ाता था बहुत। बोले नहीं हमको पक्का पता ये भीम के पुष्प है। बोले भीम तो एक फूल नहीं चढ़ाता। अर्जुन को सरप्राइज हो रहा है, उसने कहा भैया क्लियर करो हमको समझ में नहीं आ रहा, हमने कभी भीम को एक भी पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा के नहीं देखा ना बोला, और हमने हजारों चढ़ाए हैं तो ये पुष्प हमारे होने चाहिए, गलती तो नहीं है ना। बोले बिल्कुल गलती नहीं है, भीम के है। कैसे भीम के है? बोले अर्जुन जी भीम जो प्रेम से शिव की स्तुति करता है ना, एक एक शब्द हजारों पुष्प बनकर शिव पर बरस जाते हैं। आप जो श्लोक भले आपको समझ में ना आए, आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरान, ये एक एक अक्षर जो है ना हजारों पुष्पों से आरती हो जाती है राधा माधव राधा दामोदर की। ये जो भागवत के श्लोक है ना ये कृष्ण है, ये गीता के श्लोक है वो कृष्ण के मुख का वाणी है, गीतम मधुरम, ये सामान्य नहीं है। और एक एक शब्दों को आप गाओगे पढ़ोगे सुनोगे तो राधा दामोदर मानते कि कोई हमें पुष्प अभिषेक कर रहा है। फ्री में हो सकता है भैया, भीम की रास्ते पर चलने जैसा है। अर्जुन का तो बुखार ही उतर गया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले भीम का भाव इतना शुद्ध है और इतना भोला है, और हमारे नाथ भी भोला नाथ भोले है भगवान शिव, और इसलिए भीम का ये गाया हुआ श्लोक स्तुति मंत्र एक एक अक्षर हजारों पुष्प बन जाते हैं। और भीम एक मंत्र बोलता है शिव के विषय में तो हमारे पुष्पों के गाड़े बकड़ी चकड़ी भर जाती है भरी, तो इसको खाली करने आना पड़ता है। तब अर्जुन ने कहा ओके हरे कृष्ण बाद में मिलते हैं, और कृष्ण के पास गए। माधव क्या है, चलो शिव के पास। बोले नहीं अब हो गया दर्शन चलो वापस। बोले क्यों? बोले बस समझ में आ गया ना। अर्जुन नीचे मुंह करके लज्जा से खड़े हैं। तब माधव ने कहा अर्जुन बड़े बड़े मंदिरों से सोने चांदी की आरतियों से माधव मैं और शिव प्रसन्न नहीं होते, हम प्रसन्न होते हैं भाव और प्रेम से। तू भीम को बड़ा साधारण और सामान्य समझ रहा है और अपने आप को बहुत महान और पूजक उपासक समझ रहा है, देख लिया ना। बोले बस अब सब समझ लिया, प्रवचन मत दो ऐसे ही उपवास है आज, चलो वापस चलते, हो गया सब। और ये महाभारत की कथा हमें प्रेरणा देती है कि जो भी भाषा में जो भी भाव से आप राधा दामोदर को, गुरु को, भगवान को प्रार्थना करो और कोई श्लोक ना आए तो महामंत्र तो है ही है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। 16 अक्षर का महामंत्र बोलने वाला 16,000 पुष्पों का अभिषेक राधा दामोदर को कर देता है और आप रोज कर सकते हो ये काम, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए बस। आज भीमा एकादशी है, भीम का ये पवित्र प्रसंग हमें प्रेरणा देता है। भगवान व्यास ने महाभारत में इन पांडवों के विषय में एक श्लोक लिखा है, धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन। कोई युधिष्ठिर का कीर्तन करे, नाम बोले, कथा करे, सुने तो उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होगी। पाप प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। कोई भीम, वृकोदर जिसका नाम है, वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में है, उसका कीर्तन नाम कथा करे तो उसके पाप सब समाप्त हो जाएंगे। शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। कोई अर्जुन के नाम का कीर्तन कथा करे तो उसके सारे शत्रु विनश्यति, वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगा। माद्री सुतो कथयता न भवन्ति रोगा। माद्री के दो पुत्र जिसको दुनिया नकुल और सहदेव के नाम से जानती है, अगर कोई इनका नाम संकीर्तन कथा करे न भवन्ति रोगा, क्योंकि अश्विनी कुमार के द्वारा दिए हुए ये वरदान है, जो आयुर्वेद के महाआचार्य है, और इनका नाम लेने वाला बड़े बड़े भयंकर रोगों से मुक्त हो जाएगा। देखिए पांडवों का यश कीर्ति इनका नाम संकीर्तन कथा करने पर, क्योंकि कृष्ण को प्राण से भी प्रिय है पांडव, कृष्ण पांडव सुत प्रिय भागवत जी में आया है 1935। कृष्ण कृष्ण पांडु सुत प्रिय, सुत जी बोले हैं, परीक्षित बोले हैं स्वयं। तो भगवान को बड़े प्रिय है पांडव और उसमें भी भीमा। आइए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करें। भीमा एकादशी के दिन भीम का स्मरण करते हुए भीम के इष्ट आराध्य पांडवों के प्राणधन श्री श्याम सुंदर कृष्ण का, जिसका नाम गोपीनाथ गोपाल है, जिसकी कथा माधवेंद्रपुरी से जुड़ी हुई है, सब यही यही है ना। और कल हमने कहा था कि कीर्तन हुआ बढ़िया, माधवेंद्रपुरी तो अभी नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ रेमुणा में, खीरचोर गोपीनाथ में पुष्पों का प्रसाद सर पर आया, प्रसन्न होकर संकीर्तन किया, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर महाप्रभु ने सोचा रात्रिवास यहाँ करेंगे, क्यों? क्योंकि कल सुबह गोपीनाथ जी का एक दिव्य महाप्रसाद खीर खा के जाना है, और वो खीर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष है। क्यों? जिसका नाम अमृत के लिए है, जिसमें एक मधुर स्वाद है, और इसको खाने का लोभ, खाने की इच्छा महाप्रभु को हुई। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ईश्वर पादपुरी से उन्होंने इस खीर के विषय में, इस खीर को चोरी करने वाले गोपीनाथ के विषय में, और इस खीर चोरा गोपीनाथ जी ने जिस भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किया था उसकी कथा अपने गुरु मुख पद्म वाक्य सुनी थी, और वो स्मरण आ गई और वो भक्तों को कथा कहने लगे। वहां पर हमने इस प्रसंग को रोका था और इस कथा आज वहीं से चालू करते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। आप सब भी ध्यान से सुनिए और प्रयास करिए प्रेम से पीछे आवृत्ति करने का। महाप्रसाद शीर लोभे रहिला प्रभुत था, महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभुत था। आप तो बढ़िया गाते हो भाई, थोड़ा और लंबा गाते। महाप्रसाद खीर लोभे
रहिला प्रभु तथा महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभु तथा पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा
पूर्वे पहले ईश्वर पूरी ने ये कथा को कहा था और इसीलिए प्रसाद का लोभ हो गया। तो इस श्लोक में प्रथम शब्द क्या है? महाप्रसाद। और महाप्रभु को महाप्रसाद का क्या हो गया?
महाप्रसाद लोभे प्रभु रहिला तथा वहां रहे।
और इस पूरे विश्व में कृष्ण चरित्र में महाप्रसाद का परम भक्त कोई है तो भीम है जो आज निर्जला किया है। आज हम सुबह एक भक्तों को सुना रहे थे कि कृष्ण गीता में कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो हम तो क्या करें, थोड़ा सा भाव में कथाओं में शब्दों में चिंतन करते रहते तो कुछ ऐड भी तो मनोभाव से करते रहते। मानो कृष्ण को कहना, क्योंकि कह रहे कि मैं नदियों में गंगा हूं, रुद्रों में शंकर हूं, ये सब बहुत बोल रहे हैं, ऋषियों में व्यास हूं, देवताओं में इंद्र हूं, तो फिर अगर कहना होता तो कहते महाप्रसाद खाने में मैं भीम हूं। अगर बोला नहीं, लेकिन अगर आइडियल उदाहरण देना होता तो प्रसाद ग्रहणे भीमो हम, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। पांडवों के लिए जो भी प्रसाद बनता था मन तन के मन के रूप में ही बनता था, तन मन, आप समझ रहे हो ना, बाउल जो है ना आपके तो छोटे छोटे हैं, ये दामोदर के बड़े बर्तनों में बनता था। जो भी प्रसाद बनता था आधा में अकेला भीम और आधा में पूरा परिवार, फिर भी भीम पहले खा जाता था और देखता रहता अर्जुन थोड़ा देना यार, ए चुप। जैसे हम कभी कभी ज्यादा परिवार में छोटे बच्चे हो ना तो छोटे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी भाग में आता है ना पांच एप्पल है तो एक एक दिया जाए, फटाक अपना खा जाएगा फिर कहेगा ए भैया थोड़ा देना, और अमुक हारा सिकड़ा है ना मारा सांटा करे खाए नहीं ललसा है ले नहीं दो अपने तो टिफिन नाखो आने तमने आवा नाना हुई तरह अनुभव क्या है भेगा रहता हो तो। क्योंकि जो बंटवारा हो जाता है तो कुछ लोग खाने में एक्सपर्ट होते हैं और अमुक लोग कुछ लोग है जो रखते बाद में खाऊंगा। भीम सब खा जाता था, लेकिन खा जाता था इतना ही नहीं काम भी देता था, माइलेज बढ़िया था समझे ना, पेट्रोल नहीं खाता था। अपनी जेवी गाड़ी नहीं थी खाली एवरेज पे धुमाड़ा काटे, काम भी तो ऐसा करता। कोई भी राक्षस हो भीम सबको कहता था आप सोते रहो हम है ना। कहीं भी होता था पांडवों को यात्रा करनी होती थी तो कोई सवारी नहीं, भीम कहता था अर्जुन बैठ जा, अर्जुन यहाँ हाथ पे बैठ जाते थे, युधिष्ठिर महाराज को यहाँ बिठा लेता था, कुंती माता को यहाँ, और नकुल सहदेव सबको ऐसे लेके चलता था 500 किलोमीटर कोई टेंशन नहीं। काम भी तो था, ऐसा नहीं गाड़ी वाड़ी करना होता, बीच में कोई भी असुर बसुर आ गया इनको कहते आप लोग रेस्ट करो हम थोड़ा मिल लेते। वो वृकासुर वाली कथा थी ना, वृकासुर को बकासुर वृकासुर, वो एक चक्रा नगरी में पांडव रह रहे जिसके घर में रुके उसके लड़के का नंबर था, क्योंकि वो मानव भक्षी था सब खा जाता था। तो गांव वालों ने मीटिंग किया बकासुर से वृकासुर से कि भैया रोज किसको भी झपट कर जाता है, जिसका शादी था उसका तो ब्रेकफास्ट कर जाता है, किसको भी खा जाता था। उसने कहा कि तुझको एक मानव रोज देंगे और दो भैंसा देंगे बढ़िया वाला और 20 किलो 20 टन एक मन गेहूं चावल ऐसे 20 टोकरी देंगे, लेकिन किसी को खाना है। उसने कहा ओके। तो आज जिस घर में रुके थे वही ब्राह्मण के लड़के का टाइम था, रो रहा था भीम, बड़े दयालु थे। उसने कहा महाराज रो क्यों रहे? बोले हमारे लड़का का आज भोजन हो जाएगा। भीम ने कहा हम है ना हम जाएंगे। और भीम ने क्या किया, पहले तो वो सब 20 किलो सब वो खुद खा गया,
उसका था, बोले वो तो हम खा जाते, और अकेला गया वहां, मार दिया वृकासुर को। बड़े बलवान थे ना भाई, महापराक्रमी थे भीमसेन महाराज, खाने के बड़े शौकीन है, और इसीलिए आज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या पूरे शास्त्रों में इनके नाम से एकादशी हो गई, क्योंकि वो कभी भूखा रहने वाला व्यक्ति कभी भूखा रह नहीं सकता, और वो आज पानी भी नहीं पी रहा है। व्यास जी को भी सर कृष्ण को मैसेज मिला ना, उसने कहा व्यास जी झूठ तो नहीं बोल रहे ना, बोले नहीं सच्ची, बोले समझ में नहीं आता भीम और एकादशी, बोले हाँ पक्का है। कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसको समझ में नहीं, क्योंकि भीम हमारे भीम भैया और एकादशी करे ये असंभव है, इम्पॉसिबल बात है। भगवान मजाक भीम का इसी में तो उड़ाते थे। तो शब्द बड़ा अच्छा है महाप्रसाद, जो कृष्ण के अधरों से लगा है, कृष्ण ने अपने प्रेम भरे नेत्रों से जिसको देखा है, उस वस्तु का नाम हो जाता है महाप्रसाद। पूरी धाम में जगन्नाथ जी का अवतार इसीलिए हुआ। हम कलयुग के लोग आलसी क्या, परम आलसी, सुपर लेजी है, कुछ नहीं करेंगे। जगन्नाथ ने सोचा कि चलो जाके प्रसाद देता हूँ, प्रसाद तो खाएंगे ना, आलसी से आलसी खाता तो है, और इससे इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ के पंडा लोग महाप्रसाद केवल उसी को बोलते हैं। वो इस्कॉन वालों को कभी कभी झगड़ा भी करते हैं वो लोग इस्कॉन वालों से। हम लोग महाप्रसाद बोलते ना अपने अपने प्रसाद को, मंदिर के भोग को, तो पंडा लोग बोलते हैं महाप्रसाद क्यों बोलते हैं, अरे भाई भगवान का, ए चुप, डांटते हैं। बोले महाप्रसाद केवल हमारे जगन्नाथ ठाकुर का है, महाप्रभु का, तुम लोग का महाप्रसाद है ही नहीं। अब इसके साथ क्या तर्क करें, लेकिन वो लोग तर्क भी बढ़िया देते हैं। हम कहते भैया हम तुलसी पत्र लिखा के भगवान के सामने रखते, जो तुम करते हो हम करते, वेदों में लिखा वही तो हम फॉलो करते। बोले चुप, डांटते बढ़िया से, हमने प्रकट देखा है, ये सुना है। और वो क्या बड़ी बात अच्छी बोलते, बड़ी पसंद आई हमको, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम महाराज भी इसको बढ़िया से कहते हैं, वर्तमान इस्कॉन जीबीसी जो मायापुर प्रोजेक्ट संभालते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद उसे कहते हैं जो भगवान को भोग लगाए गए पात्र में ही हो। तुम लोग क्या करते हो, बड़े बड़े बर्तन में प्रसाद बनाते हो बराबर, लेकिन छोटी सी थाली में छोटी सी वाटकी लेकर जाते हो, ऐसे प्रसाद बनता है। और वो लोग क्या करते, जो मटका में बनाए वही सीधा भोग लगेगा और वही सीधा प्रसाद में बांटना जाएगा, इसको बोलते हैं महाप्रसाद। अब देखो बात भी कितना, उनका तर्क है, बोले जो तुम लोग क्या करते हो, एक किलो चावल बनाते हो, वाटकी तो 100 ग्राम की लगाते हो, महाप्रसाद उसे बोलते हैं कि 100 टन राइस बनाए तो 100 टन मंदिर में जाना चाहिए, डालते हो। कहते हरे कृष्ण सॉरी क्या कर रहे हो बताओ, उत्तर ही नहीं। और जगन्नाथपुरी में सच में ऐसा हो रहा है, जो भी बनता है सब सब मंदिर में भगवान के सामने जाएगा, हमारी तरह टोकरी थाली में लेकर प्लेट लेकर नहीं जाएंगे, और बाहर भी सब आएगा और प्रसाद उसी में दिया जाएगा, अलग वास अलग बर्तन नहीं होता। हमारे तो भोग की थाली ये लोग छूने भी नहीं देते, उसमें खाने की तो बात ही छोड़ दो, सही है कि नहीं, पूछेंगे सेकेंड इनिशिएशन है भैया, यही तो पूछेंगे पहले, है ना। और उधर पंडा लोग कुछ नहीं पूछते है, उसी में खाते हैं, उसी में खिलाते हैं। तो महा वो लोग की और बात अच्छी भी है, सही बात है, एक तरीके से सही बात है। जगन्नाथपुरी का सब कुछ सही है, क्योंकि वहां कोई नीति नहीं है, जगन्नाथ जी बढ़िया यही पसंद करते, मेरे पंडे जो बोले वही सही है। रामानुज आचार्य तर्क करने आए थे तो उसको सोए थे बिना टिकट के पहुंचा दिया कांचीपुरम, बोले निकलो यहां से। पंडा से तर्क कर रहे थे, तुम लोग ऐसा कपड़ा क्यों पहनाते हो, वो चावल में वोट लगाया हुआ कड़क पहनाया गया था। नारद पंचरात्र बोलता है रामानुजाचार्य जब पूरी गए थे तो तर्क किया, और बड़ा प्रभाव था उसका, विजय किए थे ना पूरे विश्व में। तो बंद पंडा को मना किया तो कोई पंडा कुछ बोल नहीं पाया अपना तेज प्रभाव से। बोले कल से साफ सुथरा लेके भोग बनाने का, सही लगाने का टाइम से, ये क्या 8 बजे कभी 12 बजे कभी ये कभी वो, सिस्टम है कि नहीं तुम लोगों में कुछ। तो सब पंडा चुप, अब महाराज है पंडित आचार्य है क्या बोले। और रात को जगन्नाथ को कहते ये कौन केस भेजा इधर जो हमको उपदेश झाड़ रहा है। जगन्नाथ ने कहा आप टेंशन मत लो सब ठीक कर दूंगा। और रात में रामानुजा खटिया पे सोए पूरी में, जगन्नाथ जी ने खटिया उठाया हवा में फेंका, सीधा कांचीपुरम बिना टिकट के। सुबह जगते तो कहाँ है, बोले कांचीपुरम आ गया। बिना रिजर्वेशन निकलो चाहिए ही नहीं, तुम्हारा नीति नियम सब उधर। यहां तो मेरी कर्मा माँ जब खिचड़ी बनाती है ना, तो दातुन दातुन का अगला भाग जो दांत में होता है ना, वो पीछे का भाग है ना, उसे खिचड़ी हिलाती है बिना नहाए धोए। आप लोग नहीं ट्राई करना है, नहीं तो आप लोग कहेगा अच्छा तो हम लोग फालतू में स्नान करते हैं। वो सब परम भक्त है, भाव है, शुद्ध है, प्रेम की सगाई है वहां पर। हम तो अभी प्रेम से दूर है, विषय वासना में व्यस्त मस्त लोग है, साधक है, अपनी स्थिति से प्रयास करना चाहिए। महाप्रसाद शीर लोभे रहिला प्रभु तथा, महा शीर लोभे रहिला प्रभु तथा। हम इस प्यार पर विचार कर रहे हैं, एक घंटा भी कम है बोलने के लिए। लोभ शब्द जो दिया है यहाँ, एक लोभ दुर्गुण माना गया है, लेकिन यही लोभ अगर प्रसाद के लिए हो, कथा के लिए हो, कीर्तन के लिए हो, तो ये लौल्यम अपि मूल्यम एकदम सबसे बड़ा सद्गुण हो जाएगा। है दुर्गुण काम क्रोध तथा जो नरक का द्वार है, लेकिन यही लोभ सत्संग के लिए हो जाए, प्रसाद के लिए हो जाए, बोले प्रसाद के लिए तो है लेकिन ये लोग देते नहीं है। और महाप्रसाद शब्द पर विचार करिए तो एक संकल्प लीजिए कि बने उतना प्रयास करेंगे कि इस पेट में भगवान का, प्रभु का प्रसाद डालेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी से कहा, यह श्लोक भी बड़ा सुंदर है, त्वयी उपवृत्त सक्र गंध वासो अलंकार चर्चिता उचिष्ट भोजिनो दासा तव माया जये मही। उद्धव जी कहते हैं हे कृष्ण, आपको अर्पण किया हुआ वस्त्र अलंकार या आपको भोग लगाया हुआ प्रसाद कोई भी व्यक्ति धारण करता है, जयेम माया, वो दुरत्यय माया को जीत लेता है। सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, किसको जीतने के लिए, करी बारे जीवा जाय। भागवत कहता है जितेंद्रिय वह है जो अपनी जीभ को जीता है, जीते रसे जितम सर्वम। भागवत जिसने जीभ को जीता उसने सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ जीत लिया, लेकिन जीभ का गुलाम है, जीवार लालस, इति उति धाय, यहां पानी पूरी, यहां ढोकला, यहां खमन, अभी ढूंढ रहा है चटनी के साथ, वो चक्कर काटेगा भवसागर में, अभी टाइम है उनको। जो जीभ के गुलाम नहीं है, अब जीभ से केवल कृष्ण रस, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद आस्वादन करता है, वो माया को जीत लेता है। उद्धव जी कहते हैं क्योंकि भगवान जब आंखों से अपनी दृष्टि डालते हैं तो वस्तु प्रसाद हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो खाने वाले को पवित्र कर देता है। इसीलिए महाप्रसाद लोभे क्षीर, और खीर प्रसाद, क्षीर मतलब खीर, हमारे इस्कॉन जो आज पूरे विश्व में व्याप्त है, महाप्रसाद खिलाने में यह संस्था का बड़ा ऊंचा नाम है दुनिया में, और प्रभुपाद ने इसी के बल पर चालू किया। प्रभुपाद ने एक जगह स्टेटमेंट लिख दिया है कि जहां इस्कॉन का मंदिर हो वहां के 10 किलोमीटर आजू बाजू में कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रसाद के बिना नहीं रहना चाहिए, ये इस्कॉन के लीडरों की जिम्मेदारी। अब कितना फॉलो करेंगे हम, लेकिन प्रभुपाद की प्रसन्नता तो यह है, कितना किलोमीटर आजू बाजू, एक दिशा में नहीं, इसीलिए फूड फॉर लाइफ चालू किया प्रभुपाद ने, संडे फिश चालू किया, क्योंकि प्रसाद ही सर्व दुखा नाम अनिश्य उपजाए थे। कृष्ण प्रसाद की तो इतनी महिमा है, स्वयं भगवान प्रसाद के रूप में पवित्र करने के लिए पधारे हैं, हम प्रसाद लेते ही यज्ञ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एकादशी कीर्तन में गाया, प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय, शुद्ध भगत चरण रेणु भ
भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल।
लतिका मतलब ट्री पर, लता क्रीपर, जो उस लता का मूल प्रेम भक्ति की जो लता है उसका मूल है भगत सेवा, भक्तों की सेवा, भक्तों को प्रसन्न करना, प्रेम भक्ति बढ़ेगा, नो डाउट, कोई शंका नहीं। कृष्ण स्वयं करते हैं हम भक्त पराधीनों, बोलते भी है। तो शुद्ध भक्तों की सेवा हमें सिद्धि, परम सिद्धि, कृष्ण प्रेम तक ले जाती है। और उसी भक्तों का प्रसाद अगर मिल जाए तो फिर महा के आगे और एक महा लग जाता है, महा महाप्रसाद। चैतन्य चरितामृत, भक्त अन्न खाए महा महाप्रसाद होए। अगर वो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, लेकिन भक्त खा ले तो फिर वो क्या हो जाता है, महा के आगे और एक महा लग जाता है। नारद जी कहते हैं उचिष्ट लेपान अनुमोदितो दिजे, वो एक कवल खाया उस ब्राह्मणों का, हे व्यास जी अपनी पूर्व जन्म कथा सुनाते हुए, कृष्ण कथा रुचि प्रजायते, कृष्ण कथा में मेरा रुचि अनुराग हो गया इस भक्तों के जूठन प्रसाद से। उचिष्ट की बड़ी महिमा है, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तो इस्कॉन तो प्रसाद खिलाने की संस्था है, और हमारे इस्कॉन के प्रसादों की वैरायटी में दो प्रसाद महाराजा माने जाते हैं, एक स्वीट राइस खीर और दूसरा खिचड़ी, है ना, एक दो फेमस है, एक खीर और एक खिचड़ी, संडे खिचड़ी। बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े रहते, खिचड़ी जो बनता है वो घर पे नहीं बन सकता। जगन्नाथ की भी खिचड़ी बहुत पसंद है, जो उधर पुरी में भी खीर और खिचड़ी, लेकिन आप लोग तो खीर को ही पसंद करोगे। इस्कॉन में आने से पहले खिचड़ी, इस्कॉन में आने के बाद खीर। थोड़ा ड्राइवर थोड़ा प्रगति कर लिया अभी, खिचड़ी तो बाद में सब लोग देते, खिचड़ी तो बांटने के लिए है, खीर खाने के लिए है, डिफरेंस हो जाता है। और खीर पर हम कहते हैं कि खीर में क्या होता है, खीर खाते हो, खीर पसंद करते हो, और कृष्ण भी खीर पसंद करते हैं प्रसाद में। हम तो कहीं भी हो भक्तों से कुछ तो संदेश ऐसा ही देना चाहते हैं, और आपको देकर आपके आशीर्वाद से प्रसादी में यही संदेश जीवन में उतारना चाहते हैं, इसलिए चिंतन करते रहते हैं और प्रवचनों में बोलते रहते हैं। देखो खीर में क्या होता है, दूध होता है, चावल होता है, शक्कर होता है, लेकिन भैया जब खीर आपके दोने में आती है तो दिखता क्या है, दूध और चावल। लेकिन जिसके बिना खीर खीर न मानी जाए वो है शक्कर जो दिखती। थोड़ा एनालाइज करो खीर के ऊपर थोड़ा, बराबर ना, कुछ गलती हो तो माफ करना, भूल चुक लेवी देवी करना छो बदा। शक्कर अपने आप में अच्छी लगती है, दूध भी अपने आप में बहुत पौष्टिक है, और चावल तो ऐसे ही पवित्र माना जाता है, साधु बोला जाता है, भात को साधु एक संज्ञा दी गई, साधु भात, लेकिन शास्त्रों में भात को अपने आप प्रसाद, भोग न लगे तो भी प्रसाद बोला गया है भात को। यहां तक लिखा गया है कि किसी और के घर में आपको कभी कुछ खाना पड़े अन्न तो चावल खा लेना चाहिए, क्योंकि चावल अपने आप में इतने शुद्ध है कि किसी के भी हो तो भी कोई फर्क पड़ता। रघुनाथ दास सड़े हुए खा रहे थे चावल, उस नाले से निकले हुए, गाय भी जिसको नहीं खाती थी, महाप्रभु ने छीन के खा लिया पुरी में, बड़ी सुंदर कथा है। चुदामा के क्या खाए, चावल की बात आती है, कच्चे, रुक्मणी भीख मांग रही है हमको दे दो, सभी आप खा जाओगे, जिसने शबरी के बेर खाए सुदामा के चावल उसी ने चबाए। पौवा जो है वो चावल का ही बनता है प्रभु जी, गुजराती भाषा विचार करे, हमने तो पौवा लिखी उसे ला भाई माथा कुट कर मैं इन हुई से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, ओके पफ राइस उसी के बनते हैं चावल के ही, ये चावल ही है मूल बात, सूखे थे कच्चे थे बराबर ना, बॉईल किए हुए नहीं थे, पकाए हुए नहीं। चावल महत्व, देखिए कृष्ण, इसको हम संत लोग क्या करते, कृष्ण सर्व विश्वंभर है, चावल अन्न के रूप में वही है, और राधा रानी मिश्री वो भी दूध है, दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों मिल जाए ना तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वीट राइस, दूध इतना अच्छा अकेला नहीं लगता, चावल अच्छे अकेले नहीं लगते, लेकिन दोनों मिलके प्रेम की शक्कर डाल के जब स्वीट राइस बन जाए ना वो चैतन्य महाप्रभु अवतार है। राधा दामोदर की अपनी महिमा है, अपनी जगह, लेकिन जब श्री कृष्ण चैतन्य बन गए तब तो बाजी मार गए भैया, फिर कौन पूछता है इनको। गौरांग को पूजने पर दोनों की पूजा हो जाती है अपने आप, क्योंकि दोनों एक बन गए, एक ही थे दो बने फिर एक बने, राधा कृष्ण एक तत्व, एक ही है ना, लीला आस्वादने धरे दुईरु, और वही दोनों फिर एक बन गए श्री कृष्ण चैतन्य। और मैं जो संदेश दे रहा था आपको खीर के ऊपर, क्योंकि यहां शब्द आया महाप्रसाद खीर लोभे, कुछ भक्त लोग टेंशन में होंगे कि आ कथा पूरी नहीं करे, नहीं करे, आपने पूरी करी नाखी जमती थे, कितनी बड़ी तली नाखी खाई गया मेंदानी गौनी, रमना है हमको चैतन्य चरिता अमृत में, आस्वादन करना है लीलाओं का, चिंतन करना, ऐसे तो है ही है, इसमें आप पढ़ सकते हो। खीर की बात पर हम ये विचार कर रहे हैं, दे रहे हैं, जीवन में उतारना है कि भक्त भी खीर पसंद करता है, ठाकुर जी भी खीर पसंद करता है, तो हम भक्तों को भी खीर बनना है, खीर जैसा मधुर बनना है, और खीर में भी क्या बनना है, प्रेम, जिसकी उपमा दी गई शक्कर से, और इसका महत्व क्या है कि भैया बिना शक्कर के खीर मानी नहीं जाती, और वही शक्कर जो मूल है लेकिन दिखती नहीं। सेवा साधना ऐसे करो कि अपना प्रदर्शन मत करो, आप नहीं हो आपकी कमी दुनिया पहचान ले, ऐसा बनो। खीर दिखती नहीं, दूध दिखता है, चावल दिखता है, लेकिन जो दिखता नहीं महत्व का तो वही है। ऐसे ही भक्त सेवा करता है, साधना करता है शास्त्र गुरु निर्देश में, लेकिन अपनी फोटो नहीं देता, खिंचवाता ना, हार गले में पहनना ना, अपना नाम चाहता है ना, अपना प्रदर्शन करना चाहता है, वो तो अपने आप, वो अपना अपने अस्थि मिटाकर, जब देखो शक्कर डाली जाती है वो अपनी सत्ता नष्ट कर देती है, लेकिन सबको मधुरता दे के चली जाती है। तमार घरे खीर बनाओ आवू थाय से कई बीजू थाय के जो बस तमी कई बीजी भैत नु बनावता हो, खीर सब बनाए है देखे है ना, शक्कर डाला जाता है मीठा दूध को कर देता है चावल को, लेकिन खुद रहता ही नहीं है। ऐसे ही भक्त अपना तन मन धन मानस देह गेह जो किछु मोर सब प्रभु तेरा अर्पिलु तुया पदे, फिर भी कुछ दिखता नहीं न चाहता नहीं, और ऐसा शक्कर ऐसा खीर, इसकी लोभ इसकी इच्छा तो भगवान भी करते हैं, दामोदर भी इंतजार करते हैं उन भक्तों का कि अरे सब आए खाने वाले, वो नहीं आया जिसको मैं देखना चाहता, ऐसा बनना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये शब्द वाक्य है कि ऐसी भक्ति करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे, तुम भगवान को देखने की उतनी चाह मत करो, लेकिन भगवान की आज्ञा में गुरु निर्देश में ऐसा भक्ति करो कि भगवान तुम्हें देखने आ जाए। कोई उदाहरण बोले है, नारद की आज्ञा में भगवान के नाम का जप मंत्र मधुवन में किया ध्रुव, मैत्रेय जी कहते हैं भागवत 4:9:1 सहस्त्र शीर्षा गुरुत्मतो तत, हजारों मुख जिनके है वे भगवान, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर विराजमान होकर, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, भृत्य दृदीक्षया मधुवनम गत, मधुवन में गए दर्शन देने गए नहीं लिखा, भृत्य भक्त को दृदीक्षया भक्त का दर्शन करने के लिए गए लिखा। ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी देखना चाहे, शक्कर जैसा बनना है, स्वीट राइस जैसा बनना है, और ऐसा बनाएगा ये चैतन्य चरितामृत का कथा प्रसंग, जो सुनेगा वो बनेगा ऐसा, मधुर बनेगा स्वभाव से। असली सुंदरता स्वभाव की सुंदरता है, सरलता असली आभूषण है हम वैष्णवों का. सिंप्लिसिटी इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वैष्णवा. जो सरलता है ना, विनम्रता, ये आभूषण है. जिस भक्त के हृदय में शरणागति, हम शास्त्रों में श्लोक पढ़ते हैं, भवंति नम्रा तरवा फलागमे नवाम बुद्धि भी, ऐसे कहते हैं कि जिस वृक्ष में फल लग जाए ना वो झुक जाता है. भवंति नम्रा, नम्र हो जाता है. फलंती आगमे, वृक्ष में जब फल नहीं होता तब तो खड़ा रहता है, लेकिन जब डाली में फल लग जाए तो जिसमें शरणागति प्रेम भक्ति है वो भक्त त्रिनादपि सुनिचेन तरो दिव सहिष्णुना. और ऐसा भगत कीर्तनीय सदा हरि, वो ऐसा भगत कीर्तनीय सदा हरि, नहीं तो माथाकुट सदा हरि. हरि नहीं बोलना पड़ेगा, उसका दूसरा नाम है माथाकुट सदा करी. मंदिर में उत्सव होता है अन्नकूट, और भक्त लोग करते हैं माथाकूट. वो लोग प्रसाद हूं ले जाए, वो लोग के नहीं पाट लाडवा हूं ले जाए. वाट जोता है कारे गोवर्धन पर्वत टूटे, भगवान ना दर्शन ना करता, प्रसाद ना करता. कयू आमा आमा कयू, अबे तू तो खिचड़ी लाए पर नजर बदाम ऊपर हो. बोलो वाट के हरे कृष्णा हरे. साचू लग गयो है तो माफ कर जो, सॉरी खोटू लग गयो जे लग गयो है जो भी हो. खीर सीट राइस पर विचार कर रहे हैं तो कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना. प्रयास करेंगे, भगवान गुरु बड़े दयालु है, शक्ति हमें देंगे. हमारे हृदय की इच्छा होनी, चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही इसीलिए हुआ है कि हम भक्तों को शुद्ध प्रेमा भक्ति सिखाने के लिए. और वो प्रारंभ होगी जब आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में, हमारे हृदय में गुरु और भगवान के प्रति समर्पण आए, शरणागति आए. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वकीय स्वपार्षद, अपने पार्षदों के साथ अपने भूमि अवतारी, इस भूमि पर अवतार लिया पार्षदों के साथ. क्यों अवतार लिया? करुणा करके. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वकीय स्वधाम, अपना मायापुर गोलोक वृंदावन का अभिन्न नवदीप को पृथ्वी पर प्रकट किया. स्वकीय स्वधाम, स्वपार्षद, सह अवतरी, साथ में अवतार लिया. भगवान अवतार लेते अपना धाम प्रकट करते. सची माता जगन्नाथ मिश्र को प्रकट किया आनंद यशोदा के स्वरूप, और माधवेंद्रपुरी को पहले प्रकट कराया, फिर अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु ने. गुरु को, माता पिता को, धाम को, सबको पहले प्रकट कराते हैं और फिर प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, इनका नियम है. क्यों अवतार लिया? ठाकुर भक्ति विनोद गाते हैं, आप भी इसका आस्वादन करिए. अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण. वैष्णव गीत में है ये, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, प्रथम लाइन. वो कहते हैं कि आज तक अलग अलग अवतार अनंत हुए, सहस्त्र जिसको भागवत जी कहता है, 24 मुख्य लेकिन हजारों अवतार, और स्वयं अवतार कृष्ण का भी हुआ. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, करुणा सिंधु ने बहुत लीला किया भूतल पर लेकिन प्रेम नहीं दिया. और वो ब्रह्मा को भी दुर्लभ ऐसा कृष्ण प्रेम रस देने के लिए और वैष्णवों को एक सिद्धांत सिखाने के लिए जो गीता में बोल के गए थे, माम एकम शरणम ब्रज शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण. भक्त और भक्ति का प्राण क्या है? शरणागति, टू सरेंडर. शरण पर समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं फिर प्रश्न होगा, शरणागति मतलब क्या?
दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्णे विश्वासे पालन।
पांडवों में यही सद्गुण था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास। ऐसा नहीं कि पांडवों पर जब संकट आता था तो भूवा दाना जो आ जाता था, जो जो भाई वो क्या रहे यू तुम्हें हाँ भिड़ो महाभारत में। जब भी संकट आए किसको याद करते थे? कृष्ण को। इसीलिए तो राजा सुवर्णसेन जब दिग्विजय करने भीमसेन गए, भीमसेन को देखकर सुवर्णसेन ने कहा ओ अब चांस मिला है। पांडवेर भाई पहले आइए यदुपति, अगर यदुपति द्वारकाधीश को मेरे देश में मेरे आंखों के सामने जगन्नाथ नयन पथ करना है तो भीम को टेंशन में डालता हूं। और भीम को जब संकट होगा, और भीम और पांडवों का एक स्वभाव है कि वो जब भी विपत्ति आपत्ति में आते हैं तो उसको दूर करने किसको प्रार्थना करते हैं? कृष्ण को। और कृष्ण जरूर आते हैं क्योंकि ये समर्पित भक्त है। ये जो भक्ति शरणागति जिसके पास है उसकी प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं, राइट?
भक्ति अनुकूल मात्र करो ये स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार।
ये छह दो लाइन जो हमने गाया ना ये शरणागति है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे विश्वास, और कृष्ण को ही प्रार्थना करना किसी संपत्ति में संकट में कभी भी। और इतना भजन होते हुए भी दैन्य, हमेशा अपने आप को दीनहीन विनम्र बनाए रखना। आत्मनिवेदन चौथा लक्षण, तन मन धन आत्मा जो कुछ है सब कृष्ण को समर्पित करना। और पांचवा भक्ति अनुकूल, जो भक्ति में अनुकूल है वो स्वीकार करना, जैसे एकादशी रहना, तुलसी को पानी डालना, प्रणाम करना, जप करना, ये सब अनुकूल है।
भक्ति प्रतिकूल भाव
नो मेडिटेटिंग नो इंटॉक्सिकेशन, ये जो व्यसन ये सब भक्ति के प्रतिकूल है।
वर्जन अंगीकार
उसको छोड़ देना, इसको कहते हैं शरणागति।
गुजरातीओनी सौथी मोटी कठिनाई छे के गोविंद ने माने छे पण गोविंद नो नथी मानता।
हमें कौन ने मानो, हमें कृष्ण भगवान ने मान्यो, तो कृष्ण भगवान तो कहे छे मारी माला करो के ई नो मान्ने। मतलब गीता ने माने पण गीता नी अंदर लिखी गीता नु नो माने, आने केवू कहेवाय क्यों? इसीलिए गौड़ीय ग्रंथों को पढ़िए, जब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे ना तब बुद्धि खुलेगा कि यह वास्तविकता क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। ये गौड़ीय शास्त्र देते हैं जगत को उपदेश। शरणागति मतलब जब गुरु आए मंदिर आए तो बस ऐसे ऐसे कर दिया हो गया, और फिर मनमाना जीवन जीना, व्यसन करना, पाप करना, और कहते हैं हम कृष्ण की शरण में, ऐसी होती है शरणागति। शरणागति इसे कहते हैं जब जो गाया जा रहा है। और ये शरणागति पांडवों में थी और इसी बात को जानते थे सुवर्णसेन, और इसीलिए भीम के ऊपर उसने चढ़ाई कर दिया, लड़ाई किया और इतने बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र चलाए, भीम के जीवन का रिकॉर्ड बन गया कि पहली बार कोई माणस से जे मने ढोकला कर एवो मारो भीम ने, भीम होजी गया, डबल थे गया शरीर। भीम भी सोच रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सुवर्ण सेन तो ऐसे तो भीम को मानते थे, पूजा करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा अलग सिस्टम से पूजा कर रहे थे। दो टाइप की पूजा होती है, आप लोग कभी करते हो ना, एक तो पूजा खिलाना पुष्प देना, लेकिन कोई अलग टाइप का होता है तो उसको लकड़ी से पूजा होती है, तो ये पूजा हो रही थी भीम सेन की। लेकिन भीम ने किसको याद किया? हे कृष्ण आप देख रहे हो कि नहीं, कहां हो? देखो मैं पीट रहा हूं, मने ढोकला था, कौन तेल चोड़ से
હિડંબા તો બિચારા ગટર ગજને રાખવામાં પડે છે, અને દ્રૌપદીને બીજા ચાર પહેર્યા છે, મને કોણ તેલ છોડશે? કૃષ્ણ તમે ક્યાં છો? વેર આર યુ માધવા? કિધર હો આપ? ભીમ રોને લગે, બોલે આપ મે માર ખા રહા હું. લેકિન ભીમને એક લાઈન એસી બોલી ના તો કૃષ્ણ સિંહાસન મેં હિલ ગયે. ભીમ બોલને મેં બહુ ઉસ્તાદ હે ના. ભીમને કહા, દેખો હે કૃષ્ણ, અગર મેં માર ખા રહા હું તો વાસ્તવ મેં આપ માર ખા રહે હો, ક્યોંકિ મેરી લાજ જાયગી તો આપકી જાયગી. કલ દુનિયા કહેગી કે કૃષ્ણ કે ભગત ભીમ કો પીટા. મેરા નામ બદનામ હોગા તો આપકા નામ બદનામ હોગા. ઇસીલિયે આપ અપના નામ બચાઈએ, આપ અપના સંભાલીએ, ઓર આઈએ પધારીએ, મેરી રક્ષા કરીએ. અબ ભીમ કી પ્રાર્થના ભગવાન દ્વારકાધીશ ખડે હો ગયે, ઓર ઓન ધ સ્પોટ ઉસી સમય સુવર્ણ સેન ઓર ભીમ કે મધ્ય યુદ્ધ ચલ રહા થા, ઉસકે બીચ મેં પ્રગટ હો ગયે. અભિનવ જલ ધર સુંદર બરહા પીડમ નટવર બપુ. ક્યા કહેતે હો? વેણુ કણંત અરવિંદ દલાય તાક્ષમ. યા ભીષ્મ કહેતે હૈ ત્રિભુવન કમનમ રુકમણી સ્તુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર. જો ભી શ્લોક આપકી સ્મરણ મેં આયે કૃષ્ણ કે વિષય મેં, શ્યામમ હિરણ્ય પરિધિ, જબ દ્વિજ પત્ની આ શ્યામ કો દેખતી હૈ, વનમાલ બરહમ. કૃષ્ણ ખડે હૈ નવધલ કિશોર મૂર્તિ, દ્વારકાધીશ કો દેખ કર સુવર્ણ સેન તો ભાવ મેં આ ગયા, ધનુષ છૂટ ગયા, મૂર્છિત હો ગયા, નીચે ઉતર કે ગિર રહા હૈ. એક આશ્ચર્ય હુઆ કે સુવર્ણ સેન કો દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ દર્શન દે રહે હૈ, લેકિન ભીમ કો નહીં દે રહે. ભીમ દેખ રહા હૈ કે ઇસકો ક્યા હો ગયા, અને અટેક આવ્યો, વાઈ આવી કે હું, જોડો લાવો જોડો. અચાનક ક્યાં ભીમ કો કે કૃષ્ણ આ ગયા, એટલે વો તો યુદ્ધ કરના બંધ કર દિયા સુવર્ણ સેન, ઓર ચરણો મેં ગિર રહા હૈ, લેકિન કૃષ્ણ બીચ મેં ભીમ કો તો દિખાઈ નહીં દેતે. તો વો સોચ રહા હૈ કે સુવર્ણ સેન શરણ મેં ક્યું આ ગયા, ક્યું એસે ગિર રહા હૈ. તો ઉસકો યાદ આયા કે કૃષ્ણ ને ઉધર સે કુછ રિમોટ કિયા, ક્યા રિમોટ કંટ્રોલ હૈ કે ક્યા હૈ ઉસકો અલગ, લેકિન સમજ મેં નહીં આ રહા હૈ. ઓર સુવર્ણ સેન તો કૃષ્ણ કી લીલા મેં, ઓર એસે હી કૃષ્ણ કો દેખતે હુએ જબ દંડવત કરકે ઉપર દેખતે સુવર્ણ સેન, તો ક્યા હો ગયા, કૃષ્ણ કે શરીર સે રાધા, ઉનકે શરીર સે લલિતા, વિશાખા કુંજ બન ગયા, કુંજ લીલા હોને લગી, લીલા ચાલુ હો ગઈ. તબ ઇસને કહા, પ્રભુ મેં નવદીપ વાસી હું. સુવર્ણ સેન કહેતે હૈ મેં નવદીપ વાસી હું, ઓર મેં યે મેરા આપને મુજે યહાં કા રાજા બનાયા, ઓર મેને નિયમ બનાયા થા કે મેં આપકી ક્ષેત્ર કો છોડ કે નહીં જાઉંગા. દ્વારકા આ સકતા હું યાત્રા મેં, લેકિન મેં અપના ક્ષેત્ર છોડ કે, યે મેરા નિયમ થા, ઓર મેં અપને ક્ષેત્ર કો પવિત્ર કરને કે લિયે આપકે ચરણ યહાં લાના ચાહતા થા. મેં આ નહીં સકતા ઓર આપ આને વાલે નહીં થે, ઇસીલિયે આપ માફ કરિયેગા કે મેને આપકે પ્યારે ભીમ કો થોડા સા પીટા, થોડા સા ઉસકો મલાઈ મસ્કા દિયા, લેકિન પ્લીઝ આપ સમજતે હો, ઓર આપ પ્રસન્ન હો તો મેં આપસે એક ઓર ભીખ માંગતા હું. બોલે ક્યા? જિસ ધામ મેં મેં ખડા હું, મેને સુના હૈ શાસ્ત્રો સે સંતો સે કે આપ ઇસી નિકુંજ કી રાધા કૃષ્ણ લીલા સંકીર્તન લીલા આપને પાર્ષદો કે સાથ ઇસી ભૂમિ મેં ગૌરાંગ બનકર કરને વાલે હો, ઓર વહી રૂપ દિખા દીજીએ. દ્વાપર મેં યે લીલા કબ કી હૈ? દ્વાપર યુગ કી. ઓર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કા વહી રૂપ વહી પ્રગટ હો ગયા, રાધા કૃષ્ણ સબ એક હોકર શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દોનો ભીજા ઉઠાકર કીર્તન કરતે હુએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે રામ. કીર્તન હોને લગા બઢિયા સે, ઓર સુવર્ણ સેન ભી નાચને લગા ગાને લગા. ભીમ ને સોચા ઇસકો ઓર કોન સા ઝટકી લગ ગયા, ભાઈ ક્યું નાચ રહા હૈ? ભીમ કો કુછ સમજ મેં ના રહા, લેકિન ચૈતન્ય રૂપ લીલા સંકીર્તન કો દેખ કે સુવર્ણ સેન, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એવરીવન પ્રેમ સે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે રામ
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृत्य कृत्य धन्य धन्य अपने को मानते हुए सुवर्ण सेन फिर भूमि पर लौटने लगे प्रणाम रोमांच कंपा होने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने लीला मतलब श्री कृष्ण ने अपनी चैतन्य लीला जो भावी भविष्य में होने वाली थी द्वापर में ही सुवर्ण सेन को दर्शन करा दिया और कहा हमारी लीला में आपका दर्शन जिस क्योंकि भगवान की लीला की एक महिमा है। अरे भगवान की लीला को जो शुद्ध भाव से शुद्ध भक्त से सुनता है ना वो भी लीला में प्रवेश कर जाता है तो फिर लीला को देख ले वो क्यों ना प्रवेश करे। भगवान की लीला को जो शुद्ध भाव से शुद्ध भक्त से सुन लेना वो भी देखो यहां पर भी कितने भक्त प्रवेश कर गए थे वो तो कीर्तन में जागे। ये लीला का स्वभाव है कि प्रवेश करा देती है नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परम हंस बना देती सीधी सीधा हिसाब है भैया तो प्रेम से सुने तो क्यों नहीं लीला तो ये तो लीला देख लिया तो क्यों नहीं सुवर्ण सेन जाएंगे लीला में। लेकिन भीमसेन को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन भीमसेन ने प्रार्थना किया इसलिए कृष्ण प्रकट हुए। सुवर्ण सेन का तो भाव था लेकिन प्रेयर बुलाया कौन भीम बुलाए हैं और भीम का संकट दूर करने श्याम सुंदर द्वारिकाधीश पधारे। इसीलिए जो बात हम आपको सुना रहे हैं उस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पार्षद धाम के साथ शरणागति और प्रेम दान के लिए आए है। 6 शरणागति है और ये 6 शरणागति जिस भक्त के हृदय में हो उसकी बात उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। षडविध शरणागति हैया छे जहार बोलिए षडविध शरणागति हैया छे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार ताहार प्रार्थना सुने कुमार रूप सनातन पदे दंते त्रीण करी रूप सनातन पदे हरी भगति विनोद पदे दुई पद धरी भगति विनोद पड़े पद धरी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं मेरे दांतों में घास का तिनका लेकर इसका मनोभाव होता है कि मैं घास के तिनके से भी गया गुजरा हूं बेकार दीन मेरी कोई महत्ता नहीं। ये दैन्य भाव विनम्र भाव का प्रकाशन है कि दांतों में तिनका लेना और मैं रूप सनातन के चरणों में दांतों में तिनका लेकर दुई पद धरी उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना और कैसे प्रार्थना बोले रोते रोते कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम। क्या मैं एकदम अधम हूं रोते रोते कह रहे कि मैं पापी हूं अधम हूं नीच हूं लेकिन हे रूप सनातन हे षड गोस्वामी हे वैष्णव गुरुवृंद क्या करो शिखावो शरणागति करो उत्तम
तम शिखावो शरणागति करो उत्तम।
आप हमें अपना समझकर, मैं अधम हूं लेकिन आप तो अधम तरण तारण है ना, आप हमें अपना समझकर उत्तम बना दीजिए, मुझे शरणागति का धन दीजिए कि मैं गुरु शास्त्र और प्रभु के शरणों में हमेशा समर्पित रहूं। कितना सुंदर भाव है भक्ति विनोद ठाकुर का। सत्संग भजन मतलब यही कि हमारे आचार्यों का भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति भाव है उसको बोलना, सुनना, समझना और यथाशक्ति जीवन में उतारने का विनम्र प्रयास करना, ये है सत्संग। बड़े प्रेमी समर्पित थे भीम, इसीलिए तो उसकी प्रार्थना सुनकर यदुनाथ आए थे। भीम ने सोचा कि चलो राजा तो ऐसे ही शरणागत हो गया, रो रहा है, दुखी हो गया, तो भीम ने सोचा कि चलो नीचे उतरता हूं, ऐसे उसको थोड़ा दर्द तो हो रहा था क्योंकि पहले पिटाई तो हो चुकी है। और आए और सुवर्ण सेन से कहे क्या हो गया भैया, तब ये कहा भीमसेन प्लीज माफ कर दो, मैंने आप पर बाण चलाए, आप तो हमारे पूजनीय हो, आप हमारे देश में आए, आपका हार्दिक स्वागत। अरे बोले पीटा फिर स्वागत? बोले नहीं नहीं जाने दो, गलती होती है, मेरा राज्य तन धन सब धर्मराज युधिष्ठिर को मैं समर्पित करता हूं। भीमसेन को प्रणाम, शरणागति लिया, क्योंकि भीमसेन की प्रार्थना शरणागति की थी इसलिए कृष्ण सुनते हैं। ये पांडव निर्जला और महाप्रसाद शीर लोभे प्रभु तहा रहीला, जो प्यार पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, खिचड़ी कर रहे हैं, खीर को जाने दो, अब खिचड़ी में आते हैं, खीर को तो आप समझ लिए ना क्या क्या भाव मनोभाव भक्तों का। दूसरा इस्कॉन का फेमस प्रसाद है खिचड़ी, खिचड़ी मतलब जानते हैं ना, आपके मंदिरों में पता नहीं लेकिन हम तो मीरा रोड में और देखे भी है, दोपहर में जो प्रसाद होता है राइस सांभर जो भी बच जाए, समझ गए ना आप लोग, खिचड़ी मतलब उसी में मिक्स, कोई भी देखते ही नहीं भगत लोग, कोई भी बोले खिचड़ी बनाना जो भी सब्जी डालो कितनी मात्रा में ये भी ध्यान नहीं देते, बस वध्यू घटू नाखो, ये नहीं के खिचड़ी में सब बनता है। और एक एक बात सोचने की ये है कि फिर भी वो खिचड़ी टेस्टी बनता अगर वो माप से ध्यान से बनाया जाए, नहीं बढ़िया बनेगा, लेकिन जो भी ये सब डालो, जैसे हम सुबह गौर कृष्ण महाराज की बात याद कर रहे थे, कुछ भगत लोग ऐसे होते हैं शरीर विद्या जाल जो मिला मुंह में डाल, उनका यही मंत्र होता है, देखते सोचते कुछ भी नहीं, क्या है क्या खाना है क्या नहीं, जो मिला हरी 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 बोल कर देते हैं। खिचड़ी में भी बनाने में तो यही यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन भीमसेन तो प्रसाद प्रेमी है। भगवान से द्वारकाधीश को बुलाने के लिए जब भेजा ना ये युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को, महाभारत में जैमिनी अश्वमेध पर्व में कथा है, यज्ञ करना था तो भीमसेन को कहा जाके बुला के लाओ कृष्ण को, तो भीमसेन आए द्वारिका में, भगवान खा रहे थे, तो भीमसेन का मजाक करने के लिए कहा दास को इसको रोको आने मत देना भीम को। अब भीम को कोई प्रसाद हॉल में जाने से मना करे मार खाएगा कि नहीं बताओ? भीमसेन ने कहा देखो मैं मेहमान बन के आया हूं, फाइटिंग करना चाहता नहीं, नहीं तो अभी भी WWF हो जाएगा इधर ही। बोले देखो सरकार आपको वंदन है लेकिन हमारे द्वारकाधीश ने कहा है कि आपको अंदर एंट्री नहीं है। क्यों एंट्री नहीं है? मैं उसकी बुआ का लड़का हूं, मेरा नाम भीमसेन है, जाके बोलो। बोले बोला, आपके शरीर से ही पता चलता है भीमसेन हो, जब आप महल में हिल रहे थे ना तब महल हिल रहा था, तभी समझ में आ गया कि भीम आया होगा। द्वारकाधीश जानते हैं फिर भी बना किया है नहीं आने का। क्यों नहीं आने का? अरे बोला ना प्रसाद ले रहे, भगवान क्या कर रहे? अब प्रसाद का नाम सुनते ही भीम भूखा हो गया, वो ऑलवेज भूखा ही रहता था लेकिन प्रसाद का नाम सुन के और भूखे हो जाते। बोले प्रसाद ले रहे और मना किया है? बोले हाँ। और भीमसेन को आया गुस्सा, कृष्ण मजाक करते थे भीमसेन से, सुनना ही चाहते थे कुछ उलाहना, कुछ डांट फटकार, बड़े भैया है ना, थोड़ा डांटेंगे तो छोटे को अच्छा लगता है। तो भीमसेन ने कहा अरे शादी हो गया 1008
16,160, तो अभी पत्नी का हो गया है क्या? केवल पत्नी के साथ खाएगा, भाई के साथ नहीं खाएगा क्या? अब ये डायलॉग मारे, पहले तो हमारे साथ खाते थे, बुलाते थे, अब सत्यभामा के साथ, सत्यभामा हमसे बढ़कर हो गई, सत्यभामा का स्वर्गास हो जाएगा तब कहां जाएगा, यहां तक बोल दिए। महाभारत में लिखा है अगर सत्यभामा का स्वर्ग हो जाएगा तब किधर जाएगा? अपने आप को विश्वंभर कहता है, सबको खिलाता है, अकेला अकेला खाता है, गाल पसलाता है। बांट के खाना, वैकुंठ जाना, प्रसाद का क्या सिस्टम है? अकेले खाना नरक जाना, बांट के खाना वैकुंठ जाना। दूसरे को जगत गुरु बोलते हो, अकेले अकेले खा रहे हो पेटू कहीं के, और इतना सुनकर कृष्ण मंद मंद हंस रहे हैं और भीम बिल्कुल गुस्सा हो रहे। देखो जो व्यक्ति भूखा हो वो कितना गुस्सा करता है, आप लोग घर पे सब ये लीला कर चुके हैं छोटी मोटी, है ना। और भगवान क्या करे, पापड़ था ना, जो लिज्जत नहीं था, गेहूं का था, रुक्मणी विनाय से बाप तैयार नहीं था, लिज्जत नहीं था, तो पापड़ ऐसे जोर जोर से खा रहे, तो भीम को आवाज आ रहा था, आवाज सुन के भीम के मुख में पानी आ रहा है, पानी पानी हो रहा है भीम, और ये अकेले खा रहे और आवाज करते हुए, अरे क्या खा रहे हो, कुछ हमको तो दो, अंदर एंट्री नहीं दे रहे हो, कम से कम देखने तो दो क्या खा रहे हो। तब तक भीम भगवान को तो बोले नहीं, एंट्री तो नहीं है, और एंट्री के बिना एंट्री अंदर आने नहीं दे रहा है वो जो द्वारपान था वो। और भीम इधर बोले इधर हटो, और भगवान अंदर से आवाज करे, तब तक तो कढ़ी पी रहे, दाल पी रहे, और भीम एकदम पानी पानी हो रहा है, बोले ए, क्या क्या पी रहा है, तेरा गला है कि नाला है, अंदर नहीं जा रहा है, गदा घुसा के डालू क्या, मसाला है। भीम एकदम क्रोध में गुस्सा में, भगवान तो ये चाहते थे कि भीम महाराज अपनी गर्मी थोड़ी बाहर निकाले, प्रसाद के लिए मना कर रहा है, अगर खिलाना ही नहीं था तो मेरे को अगली बार विश्व बनाना, मेरे को प्रकट ही नहीं करना, तुम अपना दास बना रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो, अपने आप को जगन्नाथ कहते हो, प्रसाद की लीला करते हो, और इधर अतिथि देवो भव, हम द्वार पर आए हैं, भाई लगते हैं, अंदर भी नहीं बुला रहा है और अकेला अकेला खा रहा है, और फिर भगवान ऐसे आवाज अलग अलग, तो साउंड निकालने में तो ये मास्टर है सब, इतना बड़े बड़े आवाज निकालते, ऐसे रसगुल्ला खा के जैसे हम करते, एकदम डकार ले रहे, तो भीम का तो गर्म हो रहा है, रोमांच रोवड़ा करो उबा थे गया है ना, तो चोटली की तो थे गई, क्या करूं अभी। तब तक भगवान खड़े हो गए और जाके कहते हैं, भीम भैया ओह क्षमा करिए, आपको हमारे लिए इंतजार करना पड़ा, और अभी नाटक, अरे नहीं भीम भैया आपके लिए तो सब कुछ प्रसाद है, क्षमा करिए, मैं आपके कई दिनों से आपका डांट नहीं सुना ना, इसलिए थोड़ा इच्छा था कि आपके आप कैसा प्रवचन करते हो, दुनिया को पता चले आपका भाव क्या है, इसलिए हमने थोड़ा सा, लेकिन आइए। भगवान खुद परोसने लगे, रुक्मणी खुद परोसने लगी, और भीम ने कहा कि बस कितनी रानियां है तेरी? बोले 16,160। बद्दा ने गैसे लगा, अब मैं श्री गणेश करता हूं, देख तू बदला लेता हूं, एंड कब होगा ये अभी मेरे हाथ में है, शुरू तुम करो खत्म हम करेंगे। 16,108 गैस चालू करो अभी, क्योंकि अब हम चालू कर रहे हैं, आपके प्रेम से ही पिला पवाओगे ना। बढ़िया प्रसाद लीला की कृष्ण ने भीम के साथ, और भीम ने बाद में कहा कि आपको महाराज युधिष्ठिर ने बुलाया है, पधारिए ना प्रसाद के लिए, हाँ कुछ मीटिंग है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है भीम भैया आप जाओ, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे अभी साथ में बुलाया, नहीं आओगे तो फिर डांट पड़ेगी, यहाँ आपने डांटा है वहां भैया डांटेंगे। भीम आप समझो, जाओ मैं आपके पीछे पीछे पक्का रात होते होते आ जाऊंगा, बस वादा श्योर। भीम ने कहा पक्का, डांट मार नहीं खिलाओगे ना? बोला नहीं नहीं, डाउट हो रहा है कन्हैया तेरे पे? बोले डाउट मत करो, नहीं अर्जुन आता है तो तू साथ में आता है, और मैं आता हूं तो बाद में, अर्जुन अगर आता तो चलो, क्यों? क्योंकि अर्जुन गाता है और मैं खाता हूं, इसलिए। अर्जुन क्या करते थे? गाते थे। भीम को ऐसे भी रहता था कि कृष्ण ज्यादा तो अर्जुन का ही साथ देते, उनका ही पक्ष लेते, मेरे को तो पूछते पूछते नहीं, और अर्जुन क्या है गाने में होशियार है ना, इसलिए। एक बार कथा ये भी है ना, महाराज सुनाते हैं कि भीम ने सोचा कि हम भी कुछ संगीत कला गान के विद्वान आचार्य बनना चाहते हैं, और हस्तिनापुर में अनाउंस किया कि भीम भैया संगीत सीखना चाहते हैं,
जो भी संगीत आचार्य है भीम को आके सिखाए, बढ़िया पगार मिलेगा। ढंढेरा पीटा गया, 8 दिन हो गए, कोई मास्टर नहीं आया, कोई नहीं। भीम ने सोचा सारे मर गए क्या, हारमोनियम वाले, तबले वाले, बेंजो कहां गए सब, कोई नहीं आ रहा। अनाउंस हुआ बढ़िया पगार दिया जाएगा, लेकिन भीम का नाम सुन के कौन जाएगा। बोले इन्हें आने आने राग ने काई लेवा देवा ने। आ थोड़ा प्रसाद नहीं डीस से गेमा पराक्रम देखाड़वनू। संगीत तो गले के राग रागिणी ताल सुर की बात है, और भीम को तो इससे करोड़ों किलोमीटर की दूरी है। तो भीम गदा लेके हस्तिनापुर में गए, जितने संगीत का आचार्य थे ना सबका सर्च मारा एड्रेस किधर है, और एक एक के पास जाके दरवाजा खोलो, अरे भीम भैया आप गदा लेके क्या करते हो आप, हारमोनियम आचार्य, हाँ तो सुना नहीं अनाउंस। बोले मैं सोया था, तो अभी हम संगीत सीखना चाहते हैं, हारमोनियम आपसे क्या करोगे, और गदा ऐसे हिला रहा है। वो कहता है हाँ हाँ बाप, अभी मना भी नहीं कर सकते। और भीम को सिखाना मतलब सारे पंडित जानते थे कि अपना भूल जाना, कुछ चेला ऐसे होते कि गुरु भूल जाएगा लेकिन चेला सीखेगा नहीं कभी। और सभी आचार्यों को पकड़ा और हस्तिनापुर में मीटिंग, बोले अलग कमरा रख के और सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया है। और भीमसेन को अभी वाजो बड़े आने आ आ आ सा आ रे चालू करो, अर्जुन अड़ती रहते जाइयो कौन आपको पड़का क्या पड़ा से हिल रहा है, द्रौपदी सब पूरा महल हिल रहा है। 8 दिन में तो सारे पांडव परेशान, बोले द्रौपदी क्या है, कुछ करो, भीम को भेजो बाहर, 8 दिन थी होता नहीं हमें। द्रौपदी ने फिर कहा देखो पतिदेव क्या है, बोलो प्रिया सुना है आज, हाँ देखो अब मैं तुमको राग सुनाता हूं, द्रौपदी के रेवा दियो, मेरे को मत सुनाओ, लेकिन हम मैं सीख रहा हूं ना अभी, देख मैं भी गाऊंगा, कृष्ण को प्रसन्न करूंगा। तब द्रौपदी ने कहा पतिदेव एक बुरा न माने तो बात कहे, आप महल में सीख रहे हो, यहाँ थोड़ी होगा, संगीत के सुर ताल के लिए तो पवित्र सुरम्य वातावरण चाहिए, जहां कोई बाधा ना हो, पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए तो वन जंगलों में सुर ताल प्रकृति के साथ आनंद लीजिए। अच्छा सभी संगीत आचार्यों को बोलो टिकट कटाओ, जंगल में मंगल करेंगे, संगीत संध्या वहां होगा अभी रात में। पांडव सब उत्सव कर रहे कि हाश गयो आज रात हुशु, भीम गया अभी और सारा संगीत डिपार्टमेंट लेके जंगलों में और पहाड़ों में सारे कर रहा है, गूंज रहा है पहाड़ में, पड़गा पड़ता था आवाज, रिफंड आता है, रिफ्रेश जब आता है। एक व्यक्ति आया, वह कहते हैं वो धोबी था, और आके कहता है भीम महाराज ओ हो बढ़िया बढ़िया। वो बोले अच्छा तू क्यों आया है इधर, मेरा राग तुझे अच्छा लगा। उसने कहा सच बोलू तो मारोगे तो नहीं। बोले नहीं। बोले मेरा गधा ढूंढ रहा हूं, गुम हो गया था, मुझे लगा कि यही होगा। त्यारे भीम ने हम जानो गु गधड़ा जम गाओ, पर्वत ऊपर थी पानी में नाखी दीदा हारमोनियम, कि आ अपड़ो धंधो, आ अपड़ी लेन नहीं, ये हमारा काम नहीं, अर्जुन का काम है, अपना अपना काम करना चाहिए ना, नहीं तो मार खाना पड़ता। कृष्ण ने कहा पक्का आऊंगा जाओ तुम, और आ गए भीमसेन। 3-4 बज गए, युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में कहा, अब तो हस्तिनापुर के राजा हो गए थे, महाभारत युद्ध के बाद की घटना हम सुना रहे आपको, कहाँ है कृष्ण। भीमसेन ने कहा अब गए थे कि नहीं। भीमसेन ने कहा मैं गया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने काम में व्यस्त और थोड़ा उग्र हो गए, बोले एक काम ठीक से नहीं करता है, वो सोच रहे थे कि अभी गया ही नहीं है, लेकिन भीम तो वायु अवतार है, वायु वेग से आके मैसेज, लेकिन साथ में नहीं आए थे प्रभु, आने का वादा किए थे बस। तो भीम कुछ बोले कि मैं गया था, उसने बोला है वो आएगा, युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं सुन रहे, बोले एक काम है नहीं करता है, हमेशा सोता रहता है खाता रहता है, सुबह से भी बोला था जाओ कि अभी शाम होने का है, कहाँ है कृष्ण, इतना गुस्से बोल के चले गए। और भीम माथा पीट रहे हैं, उधर वो डांटा इधर ये डांट रहा है, साले छोटे भी डांटते बड़े भी डांटते, वो कृष्ण छोटा है वो भी डांट रहा है ना, ये बड़ा है वो भी डांट रहा है, सब डांट क्या करे। लेकिन भीमसेन ने कहा कि आप मार खा रहा हो, लेकिन महाभारत की ये घटना हम वैष्णवों को एक बड़ी प्रेरणा देती है,
भीमसेन का ये पवित्र प्रसंग, आज भीमा एकादशी है।
भीमसेन ने वही पुकारा हस्तिनापुर में, हे कृष्ण बड़े भैया का मैं अपराधी बन गया आपके कारण, मैं आया था, आपने कहा आऊंगा, शाम हो गई आए नहीं, हे कृष्ण प्लीज लाज रखिए मेरी, पधारिए। और इतना बोलते ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से सीधा हस्तिनापुर, इनको तो कोई फ्लाइट बुक करना नहीं है, योगेश्वर है। और क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज डांट के भीम को सभा में जा रहे हैं, अपने राजमहल में जहां सभा लगी, तो सभा में जाते हैं तो उसके पहले देखते हैं कि कृष्ण वहां खड़े हैं। और भीमसेन आते हैं धीरे धीरे सभा में, वो तो सोच रहे कि और डांटेंगे क्योंकि वो तो अभी आया नहीं, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो द्वार पर कौन खड़े है, द्वारिकाधीश खड़े है, दामोदर खड़े। तो भीमसेन और कृष्ण मंद मंद सामने जब नैना मिले तो भगवान हंस रहे, बेटा आ भैया आ गया हूं, चिंता मत करो। तब भीम को साइड में लिया भगवान ने और कहा भीम भैया मैं आ गया हूं, हाँ वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन डांट तो पहले पड़ चुकी है भाई जी, तो मैं आ भी गया पर माने तो जब प्रसाद मलवानो तो ही मड़ी जियो, नहीं नहीं अब देखो क्या होता है। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते, सबके सामने सभा में, भीम माफ कर देना यार, थोड़ी जल्दबाजी में था तो मैं तुमको ज्यादा बोल दिया, तू भगवान को लेकर आया था, बोलना तो चाहिए ना मैं लेके आया था। भीम के पण तमे हां भळो आ मोटा भाई नो आज वांदो, हां भळे नहीं तमारे जी के हां भळो खरा नाना नो थोड़ा मोटा भाई मतलब हूं से एनु काम छे वढे नहीं तो मोटो नो कहवाय ने एम। हवे युधिष्ठिर महाराज ने हवे लाइट थई, अब लाइट हो रहा है, वो कह रहे कि अरे सॉरी है भीम मैं तेरे को ज्यादा बोल दिया, तू तो कृष्ण को लेके आ गया था तो महल में पहले खड़ा था। ओके और भीम कहते गाश हारू लाग्यो ने गेमो के भाई मने हौती हारा बोले बगल बोले वो बद्दे नी बच्चे, मानो ये सिखा रहे हैं कि भाई को डांटना अकेले चाहिए लेकिन प्रशंसा सबके सामने करनी चाहिए, संबंधो हारा रहे से भाई कुछ कुछ नैतिक शिक्षाएं भी है। लेकिन कृष्ण भीम को साइड में लेकर जो बात बोलते हैं वो तो और अच्छी है, वो कहते भीम भैया उस समय आप राग रागिणी सीख रहे थे और सारा संगीत संन्यास ले लिया आपने, लेकिन अब आप समझे ना मुझे अर्जुन का राग ताल जितना पसंद है ना उससे कई ज्यादा, भले आप में राग ताल नहीं है, मुझे राग ताल संगीत शास्त्र से मतलब नहीं है, मुझे तो प्रेम और भाव से मतलब है। आप कैसे भी गाओ दिल से गाओगे तो हम आएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दिल से प्रेम से, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे।
मीटिंग हुआ और बढ़िया से सभी ने पांडवों के साथ भगवान द्वारिकाधीश ने प्रसाद लिया, अन्न भोजन का आनंद लिया। लेकिन आज तो आपको इसी कथा का आनंद लेना है, भोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाप्रसाद के सबसे बड़े प्रेमी भीम ने आज व्यास की आज्ञा से इस एकादशी व्रत किया, क्योंकि मैं मर सकता हूं मार सकता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता, तो व्यास ने कहा कि एक एकादशी कर दो यार, और वो बिना जल की करोगे तो सारी एकादशी का फल मिलेगा। भीम जो ये एकादशी करता है ना ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी, तो उसकी 100 पेटियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। जो एकादशी करता है उसके जन्मों जन्म के पाप दष्ट हो जाए पवित्र हो जाए, उतना ही नहीं ये बात मुझे स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण ने कही है कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी करने वाला मुझे रुक्मणी राधा की तरह प्रिय है।
इसलिए भीम मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम ये एकादशी कर दो। भीम ने कहा एक, ओके वन। व्यास ने कहा वन लेकिन सॉलिड। भीम ने कहा काम तो कोई भी करता हूं सॉलिड ही करता हूं, वो टेंशन मत लो, पानी भी नहीं पीऊंगा एक बूंद। लेकिन दूसरे दिन सबको धंधे पे लगा देना, चौके पे जा रहे हूं पारण करीश ने, त्यारे पृथ्वी पर कहीं वत्सा नहीं। व्यास जी ने कहा वो हम देख लेंगे, लेकिन तू अत्यारे रही जा बस, दूसरे दिन का दूसरे दिन सोचेंगे, तू अभी एकादशी के लिए वादा करो। भीम ने कहा वादा, और निभाया भी, किया तो किया। भीम का कोई भी काम पराक्रम का। महाभारत में वर्णन आता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र में भीम के सामने जो भी हाथी आता था ना, लेफ्ट हैंड की एक चापट मारता था वो हाथी आकाश में इतना ऊंचे उड़ता था, बियॉन्ड ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम से परे, वो हाथी नीचे ही नहीं गिरता था, ब्रह्मांड नी बारे मोक्ष ने पामी जाता था। कितलो फटको हशे लफाट में हारू कहवाय, आपने पीड़ो नहीं। भीम की जब चपाट पड़ती थी हाथी आकाश में उड़ जाता था, नीचे नहीं गिरता था, कहां गिरता लोग देखते रह जाते थे, इतना बल था। एक एक हाथ में दो दो दस हजार हाथियों का बल था ना भीमसेन में। और इतना खाने पीने वाला बलवान व्यक्ति ने भी पानी का एक बूंद नीचे नहीं उतारा, जबकि प्रसाद का तो सबसे बड़ा प्रेमी है। तब व्यास जी प्रसन्न हुए, द्वारिकाधीश प्रसन्न हुए, और पद्म पुराण में और महाभारत में लिख दिया सुवर्ण अक्षरों से कि आने वाले हजारों युगों तक सभी वैष्णव समाज इस एकादशी को पांडव भीम एकादशी के नाम से जानेंगे। एकादशी से दिनासाद भीम का नाम जुड़ गया है, विश्व विख्यात हो गया। सब लोग सोच रहे कि हले आटली एकादशी करी अमारू नाम ज न आव्यु, नाने एक करी त्या तो नाम आवी गयो। बोलो सारे पांडव सोच रहे कि हम तो रोज कर, और ये प्रेमी एक किया तो भी इनका नाम हो गया, और हमारा देखो इतना कर रहे फिर भी नाम। लेकिन भीम ने एक किया, बढ़िया किया। महाप्रसाद लोभे प्रभु रहिला तथा, महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला तथा। महाप्रभु चैतन्य इस प्रसाद को लेने के लिए रुके। देखो जब तक हम महिमा न सुने संतों से गुरुजनों से, तब तक हमें साधना भक्ति में उत्साह आनंद अनुराग भाव प्रकट ही नहीं होता। सही बात है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु को भी लोभ हो रहा है प्रसाद लेने का, गोपीनाथ की खीर। क्यों? क्योंकि पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा, पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा। क्या हुआ था भैया? ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के सदगुरु जी का नाम है श्रीपाद ईश्वर, बड़े प्रेमी संत है। ईश्वरपुरी ने अपने जीवन में अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की परम कृपा आशीर्वाद वरदान प्राप्त किया। देखो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण प्रेम अवतार, और वे जिसको गुरु, दुनिया के गुरु है, और वे जिसको गुरु बनाए उसकी कुछ तो विशेषता होगी कि नहीं भैया? सोचने लायक बात है कि नहीं? नाम आया है ईश्वरपुरी, तो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रित भजन करने वाले हैं, उनको ये जरूर जानना चाहिए कि ईश्वरपुरी कौन है, क्या है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिसको गुरु बना रहे हैं तो उसमें क्या गुरुत्व है? अनंत गुणों के समुद्र है ईश्वरपुरी, लेकिन इन सारे सद्गुणों में एक सर्वश्रेष्ठ राज मुकुटमणि सर्वगुण माना जाता है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। जो शिष्य अपने जीवन में अपने गुरु को प्रसन्न करता है वो कृष्ण को सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। ये सनातन सिद्धांत है जो हम भक्तों को सरलता से समझने का विनम्र प्रयास करना चाहिए। ईश्वरपुरी के विषय में भक्तों लिखा गया है कि अपने माधवेंद्र पुरी जो ये जिसकी कथा खीरचोर गोपीनाथ जी के कारण हुई है, अपने जीवन की अंत वेला में माधवेंद्र पुरी बिल्कुल 90 से ऊपर साल हो गए थे और शरीर पूर्ण अस्वस्थ, यहां तक कि शौच क्रिया के लिए भी खटिया से खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसी शरीर की दशा थी माधवेंद्रपुरी पाद की अंत बेला में। और उस समय सौभाग्य से ईश्वरपुरी उनके साथ थे, गुरु सेवा सन्निधि में सन्निकट थे। और क्या करते थे, गुरु को भगवान समझकर, गुरु को साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव अतएव सद भी। आप गाते हो इस पद को गुरु अष्टकम में, इस भाव से कैसी सेवा करते थे। चैतन्य चरितामृत में कविराज महानुभाव ने ईश्वरपुरी की गुरु भक्ति के विषय में लिखा है कि कैसे सेवा करते थे। ईश्वरपुरी गोसाई कहिए करीछे श्रीपाद सेवन, माधवेंद्रपुरी की चरणों की सेवा करते थे। स्वहस्ते करे न मल मुत्रादि मार्जन, अपने हाथों से मल मूत्र भी मार्जन करते थे। जिस भक्त की गुरु वंदना हम इस्कान में गाते हैं, उस नरोत्तम दास ने भी अपने गुरु की यही सेवा की। लोकनाथ तो किसी को स्वीकार नहीं करते थे ना, लेकिन इस सेवा के बल पर न चाहते हुए भी शिष्य करना पड़ा। लोकनाथ गोस्वामी जब जाते थे शौच क्रिया को, इनको पता भी न हो और ये साफ कर देते थे रास्ता, वो शौच सब कुछ। अब सभी सुने हैं इस कथा को, कितने लोग नहीं सुने हैं नरोत्तम दास के विषय में। नहीं सुनने वाले हाथ खड़े कर रहे हैं, काफी लोग नहीं सुने। ओके, आप कभी समय मिले भक्तों से पूछिएगा, सुनिएगा। अगर इस्कॉन में आते हैं गुरु वंदना में संडे, तो समय होता है तो भक्तों से पूछना चाहिए कुछ बातें, काफी भक्त सुने हैं जानते हैं। इसलिए टाइम अभी नहीं है तो हम कह रहे हैं कि जो नहीं सुने हैं, जो सुने हैं उसको सुना दे। ये सेवा बोधयंत परस्पर, भगवत गीता का ही सूत्र है ना, 8-9 बोधयंत, सॉरी 10-9 दसवें अध्याय में बोधयंत परस्पर भगवान ने कहा है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंच च माम नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति। संत दृष्टांत देते हैं ना, वो वक्ता था ना एक गांव में, सभी ने बुलाया कि हमारे गांव में रामायण की कथा करो। तो वक्ता आया, उसने पूछा आप सभी श्रोताओं को हम राम कथा सुनाएंगे, उसके पहले एक प्रश्न पूछेंगे। बोले पूछे महाराज। बोले भगवान राम के विषय में कुछ जानते हो। तो श्रोताओं ने कहा उंगली उठाओ, सब ने उंगली उठाया। बोले जानते हो। बोले नहीं जानते महाराज, खड़े होके चले गए। बोले राम के विषय में कुछ जानते ही नहीं तो क्या सुनाओ, कुछ तो जानना चाहिए ना। कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर भैंस आगड़, कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या सुनाए। तो उन लोगों ने तो इतना बड़ा खर्चा किया था, इतना बड़ा आयोजन किया था, और वक्ता ऐसे उठ के पहले दिन चला गया, फिर क्या करे महाराज। अभी चले गए तो चले गए। बोले कोई राम के विषय में कुछ ही नहीं जानते तो उसको मैं क्या, भूमि नहीं तो बीज कहां डालूं, कुछ ही नहीं जानते उसको क्या सुना है, सब खाली भेजे वाले हैं। भेजा तो भेजा, भेजा नहीं भेजा, सब खाली लोग। वक्ताओं की समस्या थी। श्रोता ने क्या किया, दूसरे साल फिर आयोजन किया और उस वक्ता को बुलाया। फेमस था राम कथा का, पवित्र वक्ता था। लेकिन सब गांव वालों ने मीटिंग किया, अगली बार महाराज प्रश्न पूछे राम को जानते हो, हां बोलने का, सबको सुना कि नहीं। महाराज ने यही बोला, सब राम के विषय में जान, सबने कहा हाँ। इसने कहा सब जानते तो क्या सुनाओ, फिर चला गया। अगर आप सब राम के विषय में जानते ही हो तब क्या सुनाए, अब क्या करें। तीसरे साल फिर आयोजन किया, उसी वक्ता को बुलाया, गांव वालों ने मीटिंग किया, आधे लोग को हाँ बोलने का, आधे लोग को ना बोलने का। इसने पूछा राम को जानते हो, कुछ लोग बोले हाँ, तो ये हाँ पूरा नहीं, और नीचे वाले बोले ना। इसने कहा जो नहीं जानता है उसको सुना दे, हरे कृष्ण, फिर चला गया। नौकरी नोज करी। ऐसे ही आप लोग जो नहीं जानते हो, जानते हो उसको सुना दे, क्या करें, समय नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास सेवा करते थे, लोकनाथ गोस्वामी देख रहे हैं
कि भैया सेवा तो दिख रही है लेकिन सेवक नहीं दिख रहा। शबरी बाई मतंग के यहां काम करती थी, मतंग यही तो पूछे कि सेवा दिख रही है मतलब सब साफ सफाई दिख रहा है लेकिन सेवक नहीं दिख रहा। मंदिर में क्या होता है, सेवक दिख रहा है लेकिन सेवा नहीं दिख रही। सभी भगत प्रकट होते हैं केवल प्रसाद के समय। यहां उल्टा है, सेवा दिख रही है लेकिन सेवक नहीं दिख रहा। समझना चाहिए इन प्रसंगों को। नरोत्तम दास यही बात ईश्वरपुरी भी कर दिए और गुरु जी को भागवत रामायण के श्लोक सुनाते थे। आप भी कभी गुरु मिलन को जाओ ना तो दुनियादारी और अपनी समस्या ही मत झाड़ते रहो, अपने ही प्रेमी और अपने ही साथ देने वाले मंदिर में सेवा करने वाले की कंप्लेन मत किया करो। कुछ भागवत की रामायण की बात पूछो या चुप रहो उनसे सुनो। क्या किसके पास बोलना चाहिए ये भी हमारी कमी है ना। बहुत बातें हैं भक्तों समझने सुनने के लिए। गुरु शिष्य का प्रसंग बहुत प्रेरणा देने वाला है। माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी की बात हो रही है। चैतन्य महाप्रभु गुरु और उनके गुरु की, सब सेवा करते थे सेवा प्रेम भाव से। और एक दूसरा शिष्य उसी समय वहां था जिसका नाम क्या था, रामचंद्र। और वो गुरु को उल्टा सिखाई देता, क्या रो रहे हो, भगवान तो सब जगह है। और माधवेंद्रपुरी विरह राधा भाव में, विरह भाव में, हे गोविंद हे कृष्ण कहां हो, कहां चले गए, मथुरा विरह में। और ये समझ नहीं रहा था, कह रहे क्या, कृष्ण तो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में गुरु जी रो क्यों रहे हो। नास्तिकवाद झड़ने लगा, गुस्सा हो गए माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ने क्रोध किया रामचंद्रपुरी ऊपर और कहा निकल जा मेरी नजरों से क्योंकि मैं जीवन के अंत समय में तेरा मुख देखना नहीं चाहता। रामचंद्र को बहुत डांटा। तबे माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बोली भर्स ना करिला। चैतन्य चरितामृत की चौपाई है, पचपयार है ये। क्रोध आ गया, बोले निकल जा यहां से, मेरे को उपदेश देता है। बहुत गुस्सा हो गए। और इसी के कारण माधवेंद्र का, किसी भी शुद्ध भक्त को आपने क्रोध दिया अपराध किया, याद रखिएगा आपके हृदय में कामना वासना जन्म लेगी, आप भक्ति से पतन हो जाओगे। रामचंद्र का पतन हो गया। रामचंद्रपुरी नाम का जो भक्त था उसका क्या हो गया, उसमें काम वासना ईर्ष्यालु स्वभाव हो गया, सबकी निंदा करना यही काम करता था, उसका पतन हो गया। जो भी व्यक्ति गुरु को भक्त को वैष्णव को नाराज करता है, उनकी निंदा ईर्ष्या या उनके साथ कपट द्वेष या उसको क्रोध दिलाता है तो यही परिणाम आता है। हमें याद रखना है कि हमें गुरु वैष्णवों के कोप का पात्र नहीं बनना, कृपा का पात्र बनना है। ईश्वरपुरी कृपा के पात्र बने, पॉजिटिव भक्त है। और तब क्या हुआ, चैतन्य चरितामृत में लिखा है तुष्ट हैया पुरी तारे, परम प्रसन्न संतुष्ट हो गए माधवेंद्रपुरी इस भक्त के ऊपर और दिल से आशीर्वाद दिया। कहते हैं वर दिला कृष्ण तुवे हव प्रेम भक्ति, मैं तुम्हें दिल से वरदान देता हूं कि कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति तेरे हृदय में प्रकट हो जाएगी। और ये है ईश्वरपुरी। और चैतन्य महाप्रभु से ईश्वरपुरी कहां मिले थे भैया, सूरत में कतारगाम। किसको पता है, जो हाथ खड़ा करे जिसको पता है, दो तीन माताओं में चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से कहां मिले थे, नहीं पता है। आप कम से कम अपने गुरु आपको कब मिले थे इतना तो पता रखना। घना ने दी याद नहीं थी कि हमारे गुरु से ले बोलो आवा केस से हो घना, कारण की पोते गुरु थी गये पे बीजा गुरु ने भूली जाए ने, शिष्य तो त्या सांभरता है पी पोते गुरु थी गये। पिंड दान करने के लिए जाया जाता है भारतवर्ष की एक पवित्र भूमि स्थान जिसको गया कहा जाता है, गया धाम की। जगन्नाथ मिश्र का देह अवसान हुआ तो निमाई पंडित नवदीप से अपने पिताजी का पिंड दान करने के लिए कहाँ गए, गया गए थे। भगवान राम भी गए थे दशरथ का करने के लिए। वर्णन आता है पुत्र के विषय में, पुत्र की पुत्रता क्या है। जातस जीवस्य वाक्य करणात् मृत्यु भूरि भोजनात् गया या पिंड दानस्य त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता।
पुत्र की पुत्रता यही है कि वो तीन काम करे, जीवित वाक्य करण, जीते जी अपने बाप की बात माने, जीते जी अपने पिता की बात वाक्य करनात, मरनात, पिता जब मर जाए भूरी भोजनात, भंडारा करना चाहिए, संतों को खिलाना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खिचड़ी दाल चावल से काम चलाओ, एम आई कापे भक्तों ने 25 को नहीं, बापा नहीं पोगे, बापा ने संपत्ति बधी नामे कर ली थी से मफत में, पण खवरा में कंजूस आओ, आमा बधा आवी जाय, कंठीधारी छे वो आमा, एमा तमे बार कोई नथी, महान कोई ने समझवानी जरूर नथी, आए सत्य की बात पर कोई कोई मस्का पॉलिश नहीं करेंगे हम, सीधा बात समझिए, पुत्र का कर्तव्य, वेद की बात बोली जा रही, कोई घर की नहीं यहां पर। और तीसरा काम है पुत्र का, गया जाकर पिंडदान करे, गया या पिंडदानश्च पुत्रस्य पुत्रता, ये इसको कहते पुत्र, ये तीन काम। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए गया अपने पिता का श्राद्ध करने, पिंडदान करने, और वहां पर जब गया में पिंडदान किए, और तब एक महान साधु संत सामने से आ रहे थे जिसका नाम था श्री ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी का मिलन हुआ गया धाम में। पिंड श्राद्ध ये सब करना चाहिए, श्राद्ध आप लोग करते हो कि नहीं? 15 दिन आता है ना, किसको देते हो श्राद्ध? कौवा, भगवान को भोग लगाकर कौवे को डालना चाहिए, विधि है, डालते हो कि नहीं ये बताओ? नहीं डालते हो तो डालना, चालू करना, क्योंकि रामायण इस बात को कहती है, कौवे को भी डालना चाहिए, कौवा ये बापा ज समझवाना त्यारे वही नो वही ये आपड़ी आपड़े जोवानू था तू नहीं। और सही बात है, कोई भी बात है ना भक्तों, वैज्ञानिक और शास्त्रों से है, केवल भावुकता में कोई ये क्या है अंधविश्वास, कोई कोई वार्ता रे वार्ता भवटोर सारता नहीं आ बीजे ऐसे खास कर मारी हूं तुमने इसको नहीं कि अमुक भक्तों की बात करूं न्या नहीं हम जो वाला हम तो ऐसे वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 18वां अध्याय 19 नंबर श्लोक टाक दीजिए अपने देख लीजिएगा कभी। राजा रावण पुष्पक विमान पर चढ़ के विश्व सैर के लिए निकला। वाल्मीकि रामायण की कथा सुना रहे हैं आपसे, चलो थोड़ा चैतन्य चरितामृत से रामायण में भागवत में तमारा मफत में बेहूद से वांधो हूं वे अनम तो याद प्रसाद से नहीं। ये बातें ऐसी है ना, अनमोल ज्ञान है भैया, कीमत नहीं है इसकी कोई, बस प्रेम है, सुनने नहीं मिलेगा। कभी कभी कृष्ण कृपा करते हैं तब ऐसा संयोग देते हैं कि ब्रह्म सत्र हो जाए। पुष्पक विमान पर चढ़कर विश्व विजय के लिए रावण निकला, तो उशिर बीज नाम का प्रांत था, राज्य था, जिस पर राजा मरुत राज्य करते थे। और राजा मरुत क्या कर रहे थे, एक यज्ञ का आयोजन किया था उसने, और यज्ञ करा रहे थे जो जो होता उद्गाता होते हैं चार, ब्रह्मा होता उद्गाता जो चार ब्राह्मण चाहिए यज्ञ, और एक एक आचार्य के अनुसंधान में यज्ञ होता है। तो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है उसके भाई है ब्रह्मर्षि संवर्त, उसका नाम है संवर्त, जो बृहस्पति के भाई अंगिरा के पुत्र, वो मरुत के कुलगुरु पुरोहित थे। उशिर बीज प्रांत का राजा मरुत जिसको ब्रह्मर्षि संवर्त यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ दीक्षा लेकर हवन कुंड में स्वाहा हो रहा था। रावण पहुंचा पुष्पक विमान में सैन्य लेकर विश्व विजय के लिए, और ऊपर से गर्जना करता है, हे मरुत, मैं लंकाधिपति रावण आपसे युद्ध की चुनौती देता हूं, लड़ो हमसे या तो फिर शरणागत हो जाओ, दो में से एक काम, दो में से एक चुन लो। अब मरुत वीर थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का धर्म है कि कोई युद्ध के लिए ललकारे तो ना नहीं बोलते, और ब्राह्मण का धर्म है कि कोई प्रसाद के लिए बुलाए ना नहीं बोलते, अपना अपना धर्म कर्म होता है। तो क्षत्रिय है मरुत, युद्ध के लिए बोले, खड़े हो गए अपने आसन से यज्ञ दीक्षा से, और सैन्य मंत्री को बोला तैयार करो, रावण से युद्ध करेंगे। तब तक ब्रह्मर्षि संवर्त बोले, महाराज आप युद्ध नहीं कर सकते। बोले वो ललकार रहा है हमको, हम क्षत्रिय है जो भी हो, लेकिन लड़ना हमारा धर्म है। अरे महाराज आप माहेश्वर यज्ञ का आयोजन कर चुके, इस यज्ञ का नाम क्या था? माहेश्वर यज्ञ। और माहेश्वर यज्ञ का वेद विधान है कि उसको अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और दूसरा आप यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके हैं, यज्ञ में दीक्षा लेने वाले उस याज्ञिक को चाहिए, यजमान को, कि वो क्रोध न करे, हिंसा न करे। युद्ध में तो ये दोनों करना पड़ेगा आपको, क्रोध और हिंसा। युद्ध ऐसे थोड़ी करते, ले ले रसगुल्लो, एम था युद्ध। युद्ध का तो अपना सिस्टम होता है कि नहीं, क्रोध करना ही पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। दीक्षा लिए हो आप लोग भी लिए हो कि नहीं, कि रिक्शा लिए हो? याद रखना चाहिए हमेशा कि हमें दीक्षा लिया है तो हमें क्या शोभा देता है, क्या नहीं शोभा देता है। आप दीक्षा लिए हो महाराज, हिंसा क्रोध शोभा नहीं देता, तो क्या करूं? बैठो, यज्ञ चालू करो। अरे वो बोल रहा है ना, तुम बैठो, अब क्या करें? शिष्य थे ना, गुरु की मानते थे। कलयुग के शिष्य गुरु को आदेश देते हैं, लेकिन ये गुरु की मानते बैठ गए। अब रावण तो ऊपर गरज रहा है, तब तक रावण ने कहा तो फिर युद्ध चालू होगा, लेकिन ये तो बैठ गया, मतलब युद्ध तो नहीं करना इसलिए तो बैठ गया ना, लेकिन ये तो गुरु की बात में आके बैठ गया था। तब तक रावण का जो मंत्री था जिसका नाम था शुक, शुक देव नहीं शुक, उसने अनाउंस कर दिया, महाराज लंकाधिपति राजाधिराज आज रावण आज मरुत के ऊपर विजय प्राप्त करके उशिर बीज के साम्राज्य के भी अधिपति हो गए हैं और ये हम इनके शरणागत, अनाउंस कर दिया जोर से, जबकि ये शरणागति लिए नहीं, लेकिन आप बैठ गए मतलब शरणागत है, नहीं तो अभी मार देंगे अब। लेकिन ये तो कोई अनाउंस पर ध्यान नहीं, रावण की बात पर ध्यान नहीं, ये तो अपना गुरु की आज्ञा में यज्ञ की स्वाहा आहुति दे रहे हैं। तब तक रावण ने कहा चलो भाई हम यहाँ के राजा हो गए तो अभी फिस्ट होगा, क्या होगा? पार्टी होगा। कोई भी व्यक्ति विनर जब एंजॉय करे पार्टी तो करेगा ना। रावण ने कहा कि मैं यहाँ का राजा बन गया तो पार्टी करूंगा, तो अभी सभी राक्षसों को बोला जो भी ऋषि अच्छा लगे उठाओ। जैसे हम लोग होटल में कभी कभी कोई लोग भग जाते तो क्या कहते, कौन सी डिश पसंद है? पंजाबी, चाइनीज, कौन सी मंगाओ। ऐसे ही बोले कौन सा, वो बोले, एक राक्षस बोला मुझे वो जटा वाला अच्छा है, बोले उठाओ डिनर मारो, और ऋषि को पकड़ के ऐसे ही खा गया। तो दूसरा बोलता है मेरे को टकलू वो है ना वो चाहिए, अब जाने डिश पसंद करता हो, हम पनीर चिल्ली नाचो स्टार्टर क्या जैसे चालू किया, ऐसे चालू कर सब ऋषि को खाने लगे। बात यह है, वाल्मीकि जी लिखते हैं उस राजा मरुत के यज्ञ में सारे देवता भी आए थे, ऋषि तो आए थे, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण यमराज कुबेर सब लोकपाल भी आए थे, और रावण ने सबको डिनर चालू किया, नाश्ता चालू किया, तो इंद्र सूर्य चंद्र सब डर गए क्योंकि रावण का बड़ा आतंक था। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण 18वां चैप्टर 19 नंबर श्लोक, इंद्र मयूरो जात धर्मराज तु वायस क्रिकिलासो धनाध्यक्षो हंस वरुणो अभवत। इंद्र डर के मारे मोर बन गया, और रूप बदलना जानते हैं इंद्रदेव, क्या बन गया? इंद्र मयूरो जात पिकॉक बन गया, और जो धनाध्यक्ष थे कुबेर, कुबेर को धनाध्यक्ष कहा जाता है, खजांची ट्रेजर ऑफ हेवन स्वर्ग के, और वे क्या बन गए? क्रिकिलास। क्रिकिलास किसको कहते जानते? गिरगिट, गुजराती में यानी कांचीड़ो के भाई, गिरगिट बन गए। और धर्मराज जो यमराज थे वो क्या बन गए? कौवा, कौवा बन गए। और वरुण देव थे हंस बन गए, चकली उड़े, सब इधर उधर उड़ने लगे, सब क्योंकि रावण के डर से सारे देवता, नहीं तो किसी को भी ब्रेकफास्ट करे। और ये आज ये लोग पार्टी में क्या करे, कोई पशु पक्षी नहीं खाएंगे, सब ऋषि मुनि देव समाज को खाने वाले, तो ये सारे देवता रूप बदल दिए। और रावण अपनी पार्टी शार्टी करके बोले चलो दूसरे राज्य में आगे बढ़ो। तब क्या हुआ? इंद्र फिर इंद्र बन गए, लेकिन पूरी मोर जाति पक्षी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सर्प का भय नहीं होगा और तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया। खुद मोर बना था ना मयूर,
तो इंद्र ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है आशीर्वाद दिया किसको, मयूर जाति को, मोर को, कि तुम्हारा रंग जो है वो सबसे अलग टाइप का हो जाएगा, नहीं तो पहले, और तुम्हारे अंदर मुझे सहस्त्राक्ष है तो तुम्हारे पंख में भी आंखों का आकार हो जाएगा, तुम्हें सर्प से कोई भय नहीं लगेगा और तुम्हें कोई रोग नहीं होगा। और उस समय क्रिकिलास जो गिरगिट था कांचीडो, इन्हें कुबेर आशीर्वाद आया। कुबेर ने कहा, पहले वो नीला रंग का था, उसने कहा तेरा कंचन जैसा रंग हो जाएगा, इतना ही नहीं तो रंग बदलने लायक हो जाएगा, तेरी रक्षा के लिए जिस पेड़ पर जिस डाली में जाएगा ऐसा ही रंग हो जाएगा। हंस पहले नीले रंग के थे, वाल्मीकि लिखते हैं, और वरुण ने आशीर्वाद दिया कि आप उज्जवल सफेद पूनम के चांद जैसे रंग के हो जाओगे और आपका कंठ मधुर हो जाएगा क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया है। अब बात किसकी बच गई, कागवास अपने न्याता इटेशन, एटले मैं आ कथा की थी। वायस धर्मराज, वायस कौवे को वायस कहते हैं संस्कृत में, क्रौ अंग्रेजी में जो हम कहते हैं, तो धर्मराज तो कौवा बन गए थे, उसने कौवे को आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 18वां चैप्टर 29 नंबर श्लोक संख्या, मम ते यद विषयस्था मानवा सुधार्तिता। यमराज बोल रहे, हे कौवा, मैं तेरे शरीर में आया हूं और मेरी रक्षा हुई रावण के द्वारा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मेरे लोक में और पितृलोक में यमलोक में जो भी जीवात्मा जाते हैं और शुद्धार्तिता वो भूख प्यास से दुखी रहते हैं, त्वद भुक्ति अगर तेरे को कोई खिलाएगा सतृप्यन्ते। कौवा, इस पृथ्वी लोक में तेरे को कोई खिलाएगा तो उस पितृ लोक में और मेरे लोक में जो भूख प्यास से पीड़ित पितृ है वो सब संतुष्ट हो जाएंगे और अपने कुल के लोगों को आशीर्वाद देंगे सुख के वास्ते। इसीलिए श्राद्ध में कौवे को डाला जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाल्मीकि की कथा हम सुना रहे हैं आपको, रामायण शास्त्रिक है बिल्कुल, कोई बात ऐसी नहीं की गई है हमारे ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा। ऐसे हंसी मजाक में हम कह देते क्रो फेस्टिवल है, कौवे को जलसा हो गया, ऐसे तो हमारे वो गुजरात में तो हंसी मजाक वाले सुनाते, एक गांव में एक व्यक्ति ऊपर गया टेरेस पे और डाल रहा था तो कौवा आया, एकदम बैठा था दीवार पर लेकिन नीचे उतर के वो स्वीट राइस खा ही नहीं रहा है, तो उसको लगा कि क्यों नहीं आ रहा है, बापा तमे केम नथी खाता, पछी अर्धो कलाक स्वागत बोलाया तो कागड़ो आमाम करे पण आवे ज नहीं, पछी एने समझाणो बाबा जो है कि बा तम घड़े अंदर जाओ बापा बीवे ज, कारण के जीवता तम खावा दीधु न। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे। बोले तमे आप थोड़ी देर अंदर जाओ तो बापा हेठे उतर से कदाच खाए तो खाए, तो वो तो एक हंसी मजाक में जो भी बोला जाता है लेकिन शास्त्रीय बात है। अर्यमा के वाहन है कौवा, अर्यमा पितृलोक के देवता है तो इसीलिए उनको दिया जाता है। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी संतों से, लेकिन हमने आज समय और नाम आया गया और ईश्वरपुरी वहाँ पहुँचे महाप्रभु से मिलने, इसीलिए इस प्रसंग को हमने वाल्मीकि रामायण से संतों से सुना जो आपके सामने रखा था, कि जानकारी के लिए कुछ श्रद्धा उत्साह आपका भी बढ़े और आप दूसरों का बढ़ा सके। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके पिता की मुक्ति मोक्ष की क्या टेंशन है, लेकिन जगत को सिखाने के लिए वो गया गए और पिंडदान किया, और गया गए तो किससे मिलन हुआ, ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु ने जब ईश्वरपुरी को देखा दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के महाप्रभु बोले, इतना मधुर महाप्रभु बोले हैं, दास को तो ये वाक्य दिल में छू जाता है। आशा है आप भक्तों को भी अच्छा लगेगा। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु गुरु से क्या बोले, ये अंतिम बात आप सुन लीजिए आज के प्रवचन। ईश्वरपुरी कहिया छे न कथा, ईश्वरपुरी कथा कहेंगे लेकिन गुरु के मुख से सुने हैं तब आप कहेंगे ना कभी किसी को, लेकिन गुरु भी कब कहे, जब शिष्य कुछ कहेगा तब ना इच्छा।
प्रभु कहे गया यात्रा सफल आमार, जेसने देखिल चरण तुमार।
चैतन्य महाप्रभु प्रेम से हाथ जोड़कर बोले कि आज मेरी गया धाम की यात्रा सफल हो गई, क्योंकि मैं अपनी आंखों से
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम,
आपके चरण कमल को देख रहा हूं।
प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार, जे क्षण देखिलो आमी चरण तुमार।
इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी तीर्थ यात्रा में जाओ, किसी प्रेमी भक्त कथा कहने वाले आपके दर्शन दे, समझो आपकी यात्रा सफल है। यात्रा का फल ही तीर्थ फल साधु संघ कल्याण कल्पतरु, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। और तीर्थों में जाकर जो कथा नहीं सुनता, गधा बोला गया भागवत में उसको। जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखर, स एव गोखर। भक्त का दर्शन तीर्थन कुर्वंती तीर्थानी, ये भागवत है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरी गया यात्रा सफल, मानो ईश्वरपुरी बोले भैया आप तो हमारा दर्शन करने नहीं आए, ना गया यात्रा करने आए, आप तो अपने पितरों का मोक्ष तर्पण पिंड दान करने के लिए आए हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने फिर बोला,
तुम्हार दर्शन कोटि पितृगण।
हे ईश्वरपुरी, आप जैसे भक्त का आज मैं अपने नैनों से दर्शन कर रहा हूं, मेरा विश्वास है और वेद कहता है कि आपके दर्शन से एक पिता नहीं मेरे करोड़ों पिता तर गए, कोटि पितृगण। भक्त का दर्शन करोड़ों पितरों का उद्धार कर देता है। जय क्षण देखी लो, जब से आपको देखा सर्व पितृ बंध विमोक्षण, मेरे सारे पितरों का बंधन मोक्ष हो गया जब मैंने आपको देखा। अब मैं आपको अपने जीवन में गुरु बनाता हूं, और आमार यह देह तुमा समर्पिलु, मैं अपना ये शरीर आपको समर्पित करता हूं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, लेकिन हम तो पत्नी को करते समर्पण, बॉस को करते, पैसे को करते, खाली बोलते गुरु समर्पण, शर्म आनी चाहिए। जिस परंपरा में हम है ना, भगवान जब एरोप्लेन देना तो उसे उड़ाना चाहिए, रोड पर नहीं चलाना चाहिए। दूसरों को भी बीजा नहीं टाड़ी देश कोक ने प्लेन आप गो एयरबैग अने रोड ऊपर निकलो आघेरो टाळी देख नहीं प्लेन ने बीजा ने बेन जे आइटम जहां शोभे ना शोभे के नहीं। ऐसे ही हम जिस परंपरा के है ना, थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। और अंतिम बात जो बोली है चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण पाद पद्म अमृत रस पान, अमार करावो तुमी चाहे ये दान। हे गुरु ईश्वरपुरी पाद, मैं आपके चरणों में अपने देह समर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, कृष्ण पाद पद्म अमृत रस पान, कृष्ण के चरण कमलों की मधुर कथा मुझे सुनाइए, यही मैं आपसे चाहता हूं। गुरु से क्या निवेदन करना चाहिए? कृष्ण कथा गीता सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप हमें कृपा करके कृष्ण कथा अमृत रस का पान कराओ, मैं आपसे और कुछ नहीं मानता। और फिर ईश्वरपुरी पाद ने दीक्षा दिया, कृष्ण कथा भी सुनाया, और वहां पर गया में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बनाया और अपने गुरु ईश्वरपुरी को खिलाया। गौरांग की गुरु भक्ति ऐसी है कि जिस कुमार हट में ईश्वरपुरी ने जन्म लिया था ना, गुरु के गांव में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर एक बार गए कि गुरु के चरणों की रज, गुरु जहां बड़े हुए है वो भूमि तीर्थ है, तो जहां गुरु का घर था ना, चैतन्य महाप्रभु ने वो मिट्टी उठाई और प्रसाद के रूप में अपने मुख में डाली, और कुछ मिट्टी को लेकर अपनी पोटली में बांध लिया, जिए तब तक रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते थे। श्री गुरु चरण पद्म जो हम गाते हैं ना, श्री गुरु चरण रति, यही छे उत्तम गति। चैतन्य महाप्रभु रोज, और वो बोलते हुए, ईश्वर पुरीर चरण पाद रेणु मोर प्राण धन, चैतन्य भागवत। ईश्वर पुरी के चरणों की रज मेरे जीवन का असली धन है। देखिए गौरांग की गुरु भक्ति। और वे ईश्वरपुरी ने जो जो कथा सुनाया महाप्रभु का हृदय में वो धन संपत्ति था। आज मौका मिला है कि वो प्रसादी में नित्यानंद प्रभु उन सबको कहने जा रहे हैं। पूर्वे ईश्वरपुरी कहिया छे जे कथा मैं उसको आपको सुनाऊंगा और फिर कथा कहना चालू किए। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा करके प्रेम भक्ति का दान ईश्वरपुरी ने प्राप्त किया और ईश्वरपुरी के पास श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति सेवा करके प्राप्त किया। ये है गुरु शिष्य परंपरा जिसका स्मरण कीर्तन हमें पवित्र करता है, प्रेम पद तक ले जाता है, साथ साथ में प्रेरणा देता है कि हमें वर्तमान वैष्णव गुरु के साथ कैसा सेवा संबंध करना चाहिए, बहुत सारी प्रेरणा देता है। तो धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को कि इतना धैर्य से आप सुने। हमने आज भीम एकादशी और इसके अंतर्गत बस आज चैतन्य चरितामृत की कथा को आगे बढ़ाना और कहना तो छोड़ो, हमने एक ही प्यार गाया और आपको निवेदन किया बस खीर बनिए स्वीट राइस, उसमें भी शक्कर बनिए, उसमें भी अगर लोभ है तो कथा कीर्तन का लोभ बढ़ाइए, बहुत सारी बातें आप चिंतन कर सकते हो। और हमने जिस प्रवचन को जिस प्यार को गाकर चालू किया था उसी प्यार को एक बार गा के समाप्त करते हैं। आप सभी गाइए, महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभु तथा, महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभु तथा, तथा मतलब वहां, इसलिए पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा, पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कहिया छे न कथा। शिक्षा है कि आप भी मंदिर आओ प्रसाद के लिए इंतजार करो, लेकिन उसके पहले क्या करो, कथा सुनो। समझ में आ रही है, प्यार में आप चिंतन, आप कहोगे महाप्रसाद के लिए प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु भी रुक गए मंदिर, हम भी मंदिर रुकेंगे प्रसाद के लिए, लेकिन रुक के क्या किया, ईश्वरपुरी ने जो कथा बोला था वो श्रवण कीर्तन किया। ये भी प्रेरणा देता है श्लोक कि हमें प्रसाद के लिए इंतजार करना चाहिए लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए, कथा प्रसाद खाना चाहिए, तब वो प्रसाद बढ़िया काम करेगा। तो प्रसाद के लिए रुक गए हैं और कथा कीर्तन कर रहे हैं। तो हम भी इस प्रसंग को यही समाप्त नहीं करते, समाप्त मतलब वास्तव में समाप्त ही दी एंड वाला नहीं, अच्छी तरह से प्राप्त वाला है, लेकिन हम इसको यहाँ विराम देते हैं। क्यों, कोई भी कथा आज तक कोई समाप्त नहीं कर पाया, शिव ब्रह्मा भी शारदा शेष भी, हम क्या चीज है, लेकिन कथा को विराम दिया जाता है और पुनः श्री गणेश किया जाता है। जैसे भगवान को मंदिर में विश्राम देते हैं रात को, फिर सुबह मंगला में जाए, ऐसे कथा भी उनका स्वरूप है, उनको क्या दिया जाता है, विश्राम विराम दिया जाता है। और फिर कभी मौका मिले फिर वैष्णव सन्निधि अवसर ठाकुर जी दे तो फिर श्री गणेश किया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी की कथा ठाकुर जी ने कभी चाहा अवसर दिया तो आप भक्तों की सेवा में दास वाणी सेवा के लिए आएगा, लेकिन तीन दिन जो मौका दिया हमने उसके पीछे मैं ऋणी हूँ आप सभी सूरत के प्रेमी वैष्णव कांग्रीगेशन भक्तों का, खास करके इस ग्रेस भद्रनाथ प्रभु का, कि ये कथा के लिए फोन तो उसका ही था, मैं यहाँ अपने भौतिक सामाजिक कार्य के लिए आया था कुछ व्यवहारिक संबंध के नाते, लेकिन इसने कहा कि आप आ रहे हो तो कितने दिनों से, और ऐसे भी मंदिर के अध्यक्ष हमारे इस ग्रेस वृंदावन प्रभु दिल से चाहते हैं, कई बार हमसे निवेदन करे हैं और ये कहते कि वो भी बोल रहे हैं कि उनकी भी इच्छा है, तो हमने कहा चलो आ ही रहे हैं तो खाना सोना पीना तो मेरा स्वभाव है वो तो करता ही रहूँगा, लेकिन आप लोगों के संग से कम एक दो घंटा कथा में मन रहे तो भी मेरा सौभाग्य होगा। तो मैंने हाँ बोल दिया और आप सबके आशीर्वाद से हमारे मंदिर के निवासी भक्त भी बड़ा प्रेम करते हैं, राधा दामोदर की सेवा में लगे हैं और उनका भी स्नेह मित्र भाव है दास के प्रति, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे योग्यता कुछ नहीं है, भोगी है आलसी है, लेकिन वैष्णव से प्रेम है तो यही तो संपत्ति है। तो आपके प्रेम के अधीन
दास ने कुछ यथामति तुच्छ वाणी से चैतन्य चरितामृत के कुछ प्रसंगों को रामायण भागवत से जुड़े हुए गीता के श्लोक सिद्धांत भजनों को गाया सुनाया। कुछ त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिएगा और आशीर्वाद रखिए कि बस मति वाणी प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु की मिशन में कृष्ण सेवा में लगी रहे, यही भिक्षा है। कृष्ण बोलो संगे चलो, यही भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जोड़े रह जो बस साथ में रहना, हरी हरी गाना है। तो मैं आप सभी को वैष्णवों को धन्यवाद और राधा दामोदर को भी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए महामंत्र से इस वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम। दिल से क्षमा सभी चरणों में, वैष्णव चरणों में। और कथा तो समाप्त नहीं हुई, अमृत है, अमृत थोड़ा ही पीना चाहिए, इतना बहुत है, फिर कभी। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की।